आगे सबक देखिए भाई। قال وإذا مضت مدة الرزاع لم يتعلق بالرزاع تحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا رزاع بعد الفصال ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا استغني عنه। गुज़श्ता सबक में हमने बाबुल कसम पढ़ा था भाई। कसम काफ के फतहा के साथ मैंने बतलाया ये मस्तर है बमाने तकसीम के भाई, और यहां इससे मुराद औरतों के दरमियान रातों की तकसीम है कि किसी शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हों तो उस पर वाजिब है कि वो उनके दरमियान रातों की तकसीम के सिलसिले में अदल करे, यानी एक बीवी के पास जितनी रातें गुजारता है उतनी ही रातें दूसरी बीवी का भी हक है। और मैंने आपको बतलाया था कि रातों के अंदर बराबरी जरूरी है, दिन के अंदर बराबरी जरूरी नहीं। दिन में अगर एक बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है और दूसरी के साथ कम वक्त गुजारता है तो ये खावन के लिए जायज है भाई। और नीज मैंने ये भी बतलाया था कि रातों में बराबरी जरूरी है, सोहबत के अंदर बराबरी जरूरी नहीं, इसलिए क्योंकि सोहबत का दारोमदार जो है वो नशात पर होता है। मैंने बतलाया कि नशात का माना है इंसान का हशाश और बशाश और मुस्तैद होना और तबीयत का ठीक होना, और ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। लिहाजा चूंकि ये नशात जो है ये एक गैर इख्तियारी चीज है तो इसमें खावंद को मुकल्लफ नहीं किया जा सकता कि वो इसमें बराबरी करे भाई। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि बांदी का हक जो है वो आजाद औरत के मुकाबले में निसफ है, तो बांदी का हक एक सुलुस होगा और आजाद औरत का हक उससे दुगना यानी दो सुलुस होगा भाई। और साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि सफर के अंदर औरतों का कोई हक नहीं है, तो खावंद बीवियों के बगैर भी सफर कर सकता है और इनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से ले जाना चाहे तो इसका भी उसको इख्तियार है। अलबत्ता बेहतर यह है कि वो इनके दरमियान कुरआ अंदाजी करवा ले और जिसका नाम निकले उसको अपने साथ ले जाए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये कुरआ अंदाजी जो है वाजिब है, कुरानदाजी खावंद पर वाजिब है, जबकि हमारे नजदीक ये मुस्तहब है भाई। और ये भी आपको बतलाया साहिब हिदाया ने कि अगर बीवियों में से एक बीवी अपनी बारी किसी दूसरी बीवी के लिए छोड़ दे तो ऐसा करना भी जायज है, और फिर बाद में अगर वो रुजू करना चाहे तो रुजू भी कर सकती है अपनी बारी में। उसके बाद रजाअत के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बतलाया कि मुद्दत रजाअत के अंदर अगर बच्चा किसी औरत का दूध पी लेता है तो इससे हुरमत साबित हो जाती है, वो बच्चा जो है वो इस औरत का रिजाई बेटा बन गया और वो औरत जो है वो इसकी रिजाई मां बन गई, तो ये एक दूसरे पर हराम हो गए। और फुकहा ने जो तफसील बयान की एक शेर के अंदर मैंने वो जाब्ता जिक्र कर दिया कि अस जानिब शीरदह हम शवन व अस जानिब शीरखार जौजान फुरू, कि दूध पिलाने वाली की तरफ से तो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, वो औरत जिसने दूध पिलाया बच्चे की मां बन गई और उसका खावन बच्चे का रिजाई बाप बन गया, और ये रिजाई मां बाप के जो उसूल हैं वो बच्चे के भी उसूल बन गए, और ये जो रिजाई मां बाप की जो औलाद है वो इस बच्चे के रिजाई भाई बहन बन गए भाई। तो दूध पिलाने वाली की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं, जबकि दूध पीने वाले की तरफ से सिर्फ जौजान और फुरुआ जो हैं वो रिश्तेदार बनते हैं। जौजान यानी मियां बीवी व फुरुआ और उनकी औलाद भाई। दूध पीने वाले में सिर्फ मियां बीवी और उनकी औलाद जो है वो रिश्तेदार बनेंगे। मसलन दूध पीने वाला अगर लड़का था तो ये बड़ा हुआ, इसने शादी की, तो ये दूध पिलाने वाली का रिजाई बेटा है, और इसकी जो बीवी है वो रिजाई मां बाप के लिए बहू के दर्जे में है भाई, क्योंकि जैसे हकीकी बेटे की बीवी बहू होती है इसी तरह रिजाई बेटे की बीवी भी बहू है, तो ये बहू भी अपने सुसर पर हराम है भाई, अपने सुसर पर हराम है। बेटा अगर छोड़ भी दे इसको और बाद में इसका जो रिजाई सुसर है वो इसके साथ निकाह करना चाहता है, नहीं, अब उसकी कोई सूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखो, दूध पीने वाला रिजाई बेटा बना था और उसकी बीवी क्या बन गई? बहू बन गई। देखो मियां बीवी दोनों हराम। या इसी तरह अगर दूध पीने वाली लड़की थी तो ये बड़ी हुई, इसने निकाह कर लिया, तो वो जो जिस आदमी से निकाह किया वो इस लड़की के रिजाई मां बाप के लिए दामाद के दर्जे में हुआ। और जैसे हकीकी दामाद जो है वो अपनी सास पर हराम होता है, इसी तरह रिजाई बेटी का जो दामाद है वो भी सास पर हराम है। तो देखा, मियां बीवी दोनों हराम होते हैं और नीज इनकी जो औलाद है वो इनके लिए रिजाई पोते पोतियां और रिजाई नवासे नवासियां हैं, लिहाजा वो भी इन पर, ये जो रिजाई मां बाप पर हराम है भाई। बात समझ में आ गई? और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इंदल अहनाफ रिजात कलील हो या कसीर, इससे हुरमत साबित हो जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक पांच मर्तबा बच्चा एक औरत का दूध पिएगा तो फिर उससे जो है रिजात साबित होगी। और मैंने यह भी बतलाया कि उनके नजदीक एक मजलिस के अंदर बच्चा जितनी दफा भी दूध पी ले उसको एक ही शुमार किया जाएगा। तो मालूम हुआ पांच अलग अलग मजलिसों के अंदर बच्चा किसी औरत का दूध पिएगा तो फिर हुरमत साबित होगी, वो औरत इसकी रिजाई मां बन जाएगी और ये बच्चा उसका रिजाई बच्चा बन जाएगा, उससे पहले हुरमत साबित नहीं भाई। जबकि इंद अल अहनाफ कलील और कसीर रजात सब बराबर हैं, बच्चे के पेट में एक कतरा दूध भी पहुंच गया तो यह औरत उसकी रिजाई मां बन गई और यह बच्चा उसका रिजाई बेटा बन गया। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमाई साहिब हिदाया में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी वलल इमलाजतु वलल इमलाजतानी। मस्सतुन बच्चे का फेल है यानी एक मर्तबा दूध का चूसना, और इमलाजतुन ये औरत का फेल है यानी एक मर्तबा दूध पिलाना। वे मस्सतुन और इमलाजतुन में जो ता है ये वहदत की है भाई। तो हदीस में आ गया कि ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी वलल इमलाजतु वल इमलाजतानी, कि बच्चे का एक मर्तबा दूध चूसना या दो मर्तबा दूध चूसना, और इसी तरह औरत का एक मर्तबा दूध पिलाना और औरत का दो मर्तबा दूध पिलाना ये मुहर्रिम नहीं है, इससे हुरमत साबित नहीं होगी। तो इस पर इश्काल हुआ कि इस हदीस के अंदर तो पांच मर्तबा दूध पिलाने का जिक्र नहीं है, तो फिर ये कैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील के तौर पर साहिबे हिदाया ने ये हदीस जिक्र की भाई? तो मैंने जवाब दिया था कि यहां दरअसल मकसूद क्या है, अहनाफ के मजहब का रद है। इंदल अहनाफ कलील और कसीर रजात जो है वो मुहर्रिम है, जबकि इंदल शाफी रहमतुल्लाह पांच मर्तबा दूध पिलाए तो फिर उसके बाद रजात साबित होगी। तो लिहाजा जब हदीस में आ गया कि एक या दो मर्तबा दूध पिलाने से हुरमत साबित नहीं होती तो इससे अहनाफ का रद हो गया, और जब अहनाफ का रद हुआ तो खुद ब खुद शवाफे का मजहब साबित हो गया, क्योंकि यहां कोई तीसरा कौल जिक्र नहीं है। बात समझ में आ गई? और मैंने आपको बतलाया था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जो है वो हदीस आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये जो कुरान की आयत है वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, इस आयत के अंदर 10 रज़ाअतों का जिक्र था, तो पहले 10 रज़ाअतें जो थी वो उसको हुरमत का सबब करार दिया गया था। तो इस आयत में अशरा रजातिन मालूमातिन का जिक्र था कि 10 मालूम रजातें जो हैं वो हुरमत का सबब हैं। फिर उसके बाद ये हुक्म मनसूख हुआ और 5 रजातों वाला हुक्म आ गया कि 5 मालूम रजातें जो हैं वो हराम करने वाली हैं। और उस हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक मामला इसी तरह था, हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक मामला इसी तरह था। मालूम हुआ कम से कम 5 रजात जो हैं उनसे हुरमत साबित होगी। हम जवाब देते हैं कि कुरान के अंदर वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम ये मुतलक है भाई, और आपकी हदीस जो है वो खबर वाहिद है, और खबर वाहिद जो है उसके जरिए किताबुल्ला पर ज्यादती जायज नहीं, और नीज ये ज्यादती भी नसख के दर्जे में है। गोया आप इस हदीस के जरिए किताबुल्ला के इतलाक को मनसूख करार दे रहे हैं। किताबुल्ला में तो मुतलक आया, उसमें तो पांच रजातों का जिक्र नहीं है, उससे तो इतना पता चला जो भी दूध पिला दे मालूम हुआ वो रिजाई मां बन गई भाई। तो गोया आप खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह के इतलाक को मनसूख करार दे रहे हैं, हालांकि खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती और किताबुल्लाह का नसख जायज नहीं है भाई। और नीज उलमा जवाब देते हैं कि यह हदीस काबिल इस्तेदलाल नहीं है। वजह यह कि इस हदीस की बाज रिवायतों के अंदर तो यह भी जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक इस आयत को लोग इसी तरह तिलावत करते थे, यानी उसमें पांच रिजातों का लफ्ज बाकायदा जिक्र था। हालांकि शवाफिया भी यहां पर यह आयत व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम इसी तरह पढ़ते हैं, वो यहां खमसा रज़ात इन मालूमात इनका लफ्ज वो यहां पर नहीं पढ़ते। मालूम हुआ उनके नजदीक भी यह हदीस काबिल अमल नहीं है। अगर उनके नजदीक यह हदीस काबिल अमल होती फिर तो खमसा रज़ात इन मालूमात इनका लफ्ज होना चाहिए था यहां पर, लेकिन वो भी इस लफ्ज को कुरान में नहीं पढ़ते। तो इसकी तो बाज़ रिवायतों में क्या जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक इसी तरह लोग तिलावत करते थे, फिर तो उनको भी क्या करना चाहिए था, खमसा रज़ात इन मालूमात इनकी तिलावत करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी उसकी तिलावत नहीं करते। मालूम हो उनके नजदीक भी यह हदीस हुज्जत नहीं है, वो इस पर अमल नहीं करते। शवाफे फिर जवाब देते हैं कि खमसा रज़ात इन मालूमात इनकी तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन उसका हुक्म बाकी है। वो क्या कहते हैं, तिलावत मनसूख हो चुकी है लेकिन हुक्म बाकी है। हम कहते हैं नहीं, यहां कोई करीना मौजूद नहीं है कि तिलावत मनसूख हो चुकी है, बल्कि मैंने आपको जैसे बतलाया कि बाज इसी हदीस की बाज रिवायतों में तो यह लफ्ज भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक लोग इसी तरह तिलावत करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तो नसख नहीं हो सकता भाई। शवाफे क्या कहते हैं, तिलावत मनसूख है और हुकाम बाकी है। तो इसी हदीस की बाद रिवायतों में क्या आ रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक लोग इसी तरह तिलावत करते थे जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तो फिर नसख नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ यह हदीस काबिले इस्तेदलाल नहीं है भाई, यह हदीस काबिले इस्तेदलाल नहीं है भाई। तो किताबुल्लाह पर ही अमल किया जाएगा, और किताबुल्लाह में अल्लाह फरमाते हैं वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। इसमें मुतलकन दूध पिलाने का जिक्र है, पांच मरतबा का यहां पर जिक्र नहीं है। लिहाजा मुतलकन कोई औरत किसी बच्चे को मुद्दत रजात में दूध पिलाएगी तो हुरमत साबित हो जाएगी। तो हमारी दलील एक तो ये आयत है कि इस आयत के अंदर मुतलक इर्जा का जिक्र है, और नीज हमारी दलील जो है ये हदीस भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, कि रजात की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। देखो इसके अंदर भी कलील और कसीर रजात में कोई फर्क नहीं किया गया, मालूम हुआ कलील रजात भी मुहर्रम है, वो भी हुरमत पैदा कर देगी। एतराज यहां शवाफे की तरफ से होता है कि यह जो रजात हुरमत का सबब बनती है इसकी वजह यह है क्योंकि यह दूध की वजह से बच्चे के गोश्त और हड्डियां बनती हैं, तो यह दूध बच्चे का जूस बन गया, यह दूध बच्चे का जूस बन गया, और यह दूध तो जूस था उस औरत का, तो बच्चा भी उसके लिए जूस हुआ, और जूस तो इंसान पर हराम होता है इसलिए यहां पर हुरमत आ जाती है। चुनांचे बाज अहादीस में भी इस तरह का मजमून आता है भाई कि दूध जो है गोश्त और हड्डियों की नशोनुमा करता है। तो शवाफे एतराज करते हैं कि यह रजात इसलिए मुहर्रम है क्योंकि रजात की वजह से बच्चा जब दूध पीता है तो इस दूध से उसकी हड्डियां और गोश्त बनते हैं, गोया यह बच्चे का जूस बन गया, यह दूध बच्चे का जूस बन गया, और यह दूध तो जूस था उस औरत का, तो बच्चा भी उसके लिए जुज हुआ और जुज जो है इंसान पर हराम होता है, इसलिए यहां पर हुरमत आ जाती है। तो जब ये जुजियत जो है ये उस हुरमत का सबब है, तो लिहाजा कलील रजाअत से ये हुरमत साबित नहीं होनी चाहिए। कलील कुछ ना कुछ तो रजाअत हो जिससे मैं कहा जा सके इतना दूध तो बच्चा कम अज कम पिए कि हम कह सकें इससे इसकी गोश्त और हड्डियां बनी होंगी। लिहाजा कलील दूध पीने से रजाअत साबित नहीं होनी चाहिए। हम जवाब देते हैं, साहिब हिदायत जवाब देते हैं कि हां आपकी बात ठीक है, ये जो हुरमत आती है रजाअत में इसका सबब जुज़ियत है कि बच्चा क्या है मां का जुज बन जाता है, लेकिन ये दूध का बच्चे का जुज बनना ये तो एक अमरे बातिनी है, ये तो एक छुपी हुई चीज है जो हमें नजर नहीं आती, लिहाजा इस पर हुरमत का मदार नहीं होगा, बल्कि हुरमत का मदार जो है जाहिरी फेल पर रखा जाएगा और जाहिरी फेल इर्जा है मां का बच्चे को दूध पिलाना। तो इर्जा यानी अमरे जाहिरी पर इस हुरमत की बुनियाद होगी, अमरे बातिनी यानी जुज़ियत पर इसकी बुनियाद नहीं होगी। तो बस जब बच्चे को एक औरत ने दूध पिलाया है तो उसी पर हुरमत का हुक्म लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद मुद्दत रजाअत को जिक्र फरमाया साहिबे हिदाया ने। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक रजाअत की मुद्दत 30 महीने हैं, यानी ढाई साल। ढाई साल की मुद्दत के अंदर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी लेगा तो हुरमत साबित हो जाएगी, जबकि साहिबैन के नजदीक और इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक मुद्दत रजाअत जो है वो 2 साल है, 2 साल है, और जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुद्दत रजाअत 3 साल है। इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि, कि माएं जो हैं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। इससे मालूम हुआ कि कम से कम 2 साल दूध पिलाना ये बच्चे का हक है। बच्चे का हक क्या है कि मां इसको 2 साल तक कम से कम दूध पिलाए। तो ये 2 साल हुए, ये तो बच्चे का हक है, ये तो दूध पिलाया ही जाएगा, उसके बाद कुछ मजीद मुद्दत भी चाहिए जिसके अंदर बच्चे को दूध से छुड़ाकर दूसरी गजा पर यानी रोटी वगैरह खाने पर उसको लगाया जाए। भाई तो 2 साल पर मजीद भी कुछ मुद्दत चाहिए जिसके अंदर बच्चे की गजा को तब्दील किया जा सके, और इसका अंदाजा इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने 1 साल के साथ लगाया है कि 1 साल ऐसी मुद्दत है जिसमें इंसान एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदल सकता है, लिहाजा 1 साल मजीद जो है शुमार किया जाएगा। तो ये कुल 3 साल हो गए मुद्दत रजाअत के। भाई तो 3 साल के अंदर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी लेगा तो रजाअत साबित हो जाएगी। भाई जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, कि बच्चे का हमल और उसका दूध छुड़ाना इसकी मुद्दत 30 महीने हैं। मालूम हुआ 2 चीजों की मुद्दत 30 महीने जिक्र की जा रही है, तो इस मुद्दत को इन दोनों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। मालूम हुआ कुछ मुद्दत हमल की है और कुछ मुद्दत फिसाल की है यानी दूध छुड़ाने की है, और हमल की तो कम से कम मुद्दत 6 महीने है। 6 माह के अंदर एक औरत एक सही सलामत बच्चे को जन्म दे सकती है, इससे पहले नहीं। तो हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है, तो इस 30 महीने में से 6 महीने हमल के हो गए और बाकी 24 महीने यानी 2 साल वो फिसाल के हो गए यानी दूध छुड़ाने के। तो वो मालूम हुआ मुद्दत रजाअत कितनी है, 2 साल है। और नीज वो फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है ला रिजा अबाद हौलैनी, कि 2 साल के बाद रजाअत नहीं है। और नीज इसी तरह वो फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह फिसालुहू फी आमैनी, कि बच्चे का दूध छुड़ाना 2 साल के अरसे में है यानी 2 साल में बच्चे का दूध छुड़ाया जाएगा। तो देखो यहां पर भी 2 साल का जिक्र है, और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वल वालिदा तो युर्ज़िअना औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि, कि मां अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, यहां पर भी 2 साल का जिक्र है। तो इन सारे दलाइल से साबित हो गया कि मुद्दत रजाअत 2 साल है। भाई और उसके बाद फिर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील आई। इमाम साहब की दलील भी यही आयत है, वहमलुहू वफिसालुहू सलासून शहरा। इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां पर हमल और फिसाल दोनों की मुद्दत जो है 30 महीने जिक्र की गई है। तो जब दो चीजों के लिए एक मुद्दत जिक्र की जाए तो वो हर एक के लिए मुद्दत शुमार होती है। ये इसी तरह है जैसे दो दैनों के लिए एक मुद्दत जिक्र की जाए तो हर दैन के लिए वो पूरी पूरी मुद्दत शुमार की जाती है। मसलन एक आदमी ने मेरे 1000 दिरहम भी अदा करने हैं और 100 कफीज गंदुम भी अदा करनी है, तो इस आदमी पर मेरे दो दैन हो गए, 1000 दिरहम भी और 100 कफीज गंदुम भी। अब मैं इस आदमी से कहता हूं कि आपके लिए ये दोनों दुयून जो है इनकी मुद्दत 6 माह है। आपके पास इन दोनों दुयून की कितनी मुद्दत है? 6 माह है, 6 माह है, उसके बाद आपको दुयून अदा करने होंगे। तो आप देखो दो दुयून की मुद्दत 6 माह बयान की गई। इसका यह मतलब नहीं है कि यह मुद्दत दोनों दुयून में तकसीम की जाएगी कि एक दैन के भी 3 महीने हो और दूसरे दैन के भी 3 महीने हो, ऐसा नहीं है। बल्कि उर्फ में दो दैनों की एक मुद्दत जिक्र की जाए तो हर दैन के लिए वो पूरी पूरी मुद्दत होती है। तो यहां पर भी हमल और फिसाल दोनों में से हर एक के 30-30 महीने होंगे, लेकिन हमल जो है वो तो पेट में 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। भाई हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, वो फरमाती हैं कि बच्चा 2 साल से मामूली मिकदार ज्यादा भी मां के पेट में नहीं रह सकता। और ये ऐसी बात जिक्र की जिसका पता अकल से नहीं चल सकता। अकल ये नहीं हमें बतलाती कि बच्चा कितने अरसे तक मां के पेट में रह सकता है और कितने अरसे तक नहीं रह सकता। मालूम हुआ उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी होगी। तो सहाबा का वो कौल जो अकल से मालूम ना हो सके वो भी हदीसे मरफू के दर्जे में होता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का यह कौल भी हदीसे मरफू के दर्जे में है। चुनांचे इस हदीस से पता चला कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है। आयत से हमने क्या अंदाजा लगाया कि हमल की मुद्दत 2.5 साल है, लेकिन दूसरी दलील आ गई तो उस दलील की वजह से अब इस मुद्दत में कमी हो जाएगी और हमल की मुद्दत 2 साल ही साबित होगी। तो आपके जहन में यह इश्काल ना आए भाई कि आयत से तो पता चल रहा है हमल की मुद्दत 30 महीने है, कितनी 30 महीने है, और आप हदीस को तरजीह दे रहे हैं किताबुल्लाह पर। भाई हदीस के अंदर तो 2 साल की मुद्दत है और आप भी क्या कह रहे हैं 2 साल। तो जवाब यह कि भाई यहां कोई आयत से कतई तौर पर यह पता नहीं चल रहा कि हमल और फिसाल दोनों की 30-30 महीने मुद्दत है। अगर कतई तौर पर यह पता चलता कि दोनों की मुद्दत 30-30 महीने है तो साहिबैन भी इसी तरफ जाते। हालांकि साहिबैन तो किस तरफ गए हैं कि दोनों की मिलाकर मुद्दत 30 महीने है। तवज्जो है, मालूम हुआ यहां पर जो इमाम साहब ने आयत का माना निकाला है वो कोई कतई नहीं है, लिहाजा दूसरी दलील के जरिए उसमें कमी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा हमल की मुद्दत तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल हुई, लेकिन दूध छुड़ाने की मुद्दत के लिए तो कोई कमी वाली दलील मौजूद नहीं है, लिहाजा वो 2.5 साल ही शुमार की जाएगी। नीज इमाम साहब की दूसरी दलील, वो फरमाते हैं कि कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वफिसालुहू फी आमैन, इसका दूध छुड़ाना है 2 साल में। और इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलवालिदात युर्ज़िअना औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, तो इससे भी पता चला कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, लेकिन 2 साल के बाद भी कुछ वक्त चाहिए, कुछ वक्त चाहिए जिसमें बच्चे को एक गजा से दूसरी गजा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया जाए। और उसका अंदाजा उन्होंने 6 माह के साथ लगाया है, यानी अदना मुद्दत हमल। और जैसे 6 माह के अंदर जब हमल की पैदाइश होती है, देखो उसकी गजा बदल गई, पहले उसकी गजा वही थी जो मां की गजा थी, और उसके बाद जब पैदाइश हुई अब इसकी गजा दूध बन गया। तो मालूम हुआ 6 माह की मुद्दत काफी है जिसमें एक गजा से दूसरी गजा की तरफ बच्चा मुंतकिल हो सकता है, लिहाजा 2 साल पर मजीद 6 माह का इजाफा किया जाएगा ताकि बच्चे को एक गजा से दूसरी गजा की तरफ मुंतकिल किया जा सके। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब की नकली दलील भी आ गई और आकली दलील भी आ गई। भाई और बाकी वो जो हदीस जिक्र की थी उसका जवाब दिया। हदीस में आया था ला रिजा बाद हौलैन, दो साल के बाद रिजात नहीं है, तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि उससे मुराद इस्तेहकाक है, यानी दो साल से ज्यादा बच्चा रिजात का मुस्तहिक नहीं है। या बाजों ने यहां इस्तेहकाक का माना किया कि मां उजरत की मुस्तहिक नहीं है दो साल के बाद। मैंने आपको बतलाया था कि अगर मियां बीवी के दरमियान तलाक हो गई है और उनका एक छोटा बच्चा है और मां अब बच्चे को दूध पिलाने की उजरत खावन से तलब करती है कि तुमने मुझे तलाक दे दी है, अब मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो तुम्हें उजरत देना पड़ेगी, तो मां उजरत का मुतालबा कर सकती है भाई। और इसमें फिर ये मां जो है दो साल की मुद्दत तक उजरत की मुस्तहिक होगी, जब दो साल पूरे हो जाएं रजायत के तो फिर उसके बाद मां उजरत की मुस्तहिक नहीं है। और नीज कहते हैं जो आयत के अंदर भी आया था कि वल वालिदा तो युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि मां पूरे दो साल तक बच्चों को दूध पिलाएं, ये आयत भी उसी इस्तेहकाक पर महमूल है कि ये बच्चे का हक है कि मां उसको दो साल तक दूध पिलाए। या ये माना है कि मां दो साल तक दूध पिलाने पर उजरत की मुस्तहिक है भाई, तो ये आयत भी इस्तेहकाक पर महमूल है। और दलील इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं फइन अरादा फिसालन अन तराज़िन, फिर अगर वो दोनों बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहें तो देखो दो साल के बाद आगे फा आ रही है और फा किस लिए आती है, ताकीब माल वसल के लिए आती है, यानी दो साल के बाद का हुक्म अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि दो साल के बाद अब अगर मियां बीवी बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहें, मालूम हुआ दो साल के बाद भी दूध पिलाना जायज है। अगर दो साल के बाद दूध पिलाना जायज ना होता तो कुरान में कभी भी यूं ना होता फइन अरादा फिसालन अन तराज़िन, बात समझ में आ गई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि फतवा साहिबैन के कौल पर है मुद्दत रजाअत दो साल है, मुद्दत रजाअत दो साल है और दो साल के बाद मां का बच्चे को दूध पिलाना हराम है, बात समझ में आ गई, उसके बाद दूध पिलाना जायज नहीं। तो बाज़ उलमा ने फिर तत्बीक दी दोनों कौलों में, एक साहिबैन का कौल है कि मुद्दत रजाअत दो साल है, एक इमाम साहब का कौल है कि मुद्दत रजाअत ढाई साल है। तो रजायत के सिलसिले में फतवा साहिबैन के कौल पर दिया जाएगा कि दो साल से जायद मां दूध नहीं पिला सकती, और हुरमत के सिलसिले में जो है इमाम साहब के कौल को तरजीह दी जाएगी कि अगर ढाई साल के अंदर भी कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाएगी तो हुरमत साबित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال وإذا مضت مدة الرزاع لم يتعلق بالرزاع تحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا رزاع بعد الفصال। भाई अब मसला बयान फरमा रहे हैं कि मुद्दत रजाअत के बाद अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या उससे हुरमत साबित होगी, तो साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि नहीं, मुद्दत रजाअत के बाद अगर कोई औरत दूध बच्चे को पिलाए तो उसे रजाअत साबित नहीं होगी। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह ईदा मजहत मुद्दतुर रजाई, और जब रजायत की मुद्दत गुजर जाए लम यह ताल्लक भी रजाई तहरीम, तो फिर रजायत के साथ तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा। लिकौल ही अलह सलात वसलाम, बवजह हजूर अक्रम सल्लाम के कौल मुबारक के आपने फरमाया ला रिजा अबादल फिसाल, के दूध छुड़ाने के बाद रजायत नहीं है, दूध छुड़ाने के बाद रिजात नहीं, यानी उसके बाद रिजात नहीं हो सकती। आगे दूसरी अब अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं वली अन्नल हुर्मत बिअतबारी नुशूई, नुशू बई आखिर में हमजा है नुशू उन, तो नुशू याद रखो इसका माना है बढ़ोतरी और नशो नुमा अफजाइश भाई बढ़ना, एक चीज का बढ़ना। देखो बच्चा दूध पिएगा तो उससे उसकी गोश्त और हड्डियां बनेंगी और बच्चे की उससे नशो नुमा होगी, तो अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नल हुर्मत बिअतबारी नुशूई, कि ये जो रिजायत की वजह से हुर्मत आती है ये नशो नुमा के एतबार से है। रिजायत की वजह से हुर्मत क्यों आती है, कि इसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा होती है और ये दूध बच्चे का जूस बन गया, और ये दूध तो औरत का जूस था, तो मालूम हुआ बच्चा भी क्या बन गया, औरत का जूस बन गया। तो कहते हैं वली अन्नल हुरमत बेअतबार नुशूई, और इसलिए क्योंकि रिजात की जो हुरमत है ये नशोनुमा के एतबार से है, वदालिका फिल मुद्दती, और ये नशोनुमा तो मुद्दत रजात के अंदर होगी, ये नशोनुमा तो वदालिका फिल मुद्दती, और ये जो नशोनुमा है फिल मुद्दती ये तो मुद्दत रजात ही के अंदर होगी। इजिल कबीरु ला यतरब्बा बिही, इसलिए क्योंकि जो बड़ा बच्चा होगा ला यतरब्बा बिही वो इसके जरिए परवरिश नहीं पाता
जी।
दो साल से कम बच्चा है वो तो दूध पर उसकी परवरिश हो रही है, दूध के जरिए उसकी नशोनुमा हो रही है, लेकिन दो साल से बड़ा बच्चा जो है वो उसको जब रोटी वगैरह पर लगा दिया है तो अब दूध पर उसकी परवरिश नहीं है भाई। ईदिल कबीर उलायत और अब्बा भी, इसलिए क्योंकि जो बड़ा बच्चा होगा वो इस दूध पर परवरिश नहीं पाता। वला युअतबरु अल-फिताम क़ब्लल मुद्दति इल्ला फी रिवायतिन अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह तआला इज़ा इस्तुग़निया अन्हु। जी यहां से आपको ये बतला रहे हैं अगर दो साल से पहले ही कोई औरत बच्चे का दूध छुड़ा देती है, उसको दूसरी गजा पर लगा देती है, फिर उसके बाद दूध उसका छूट चुका है, फिर उसके बाद इसी दो साल के पूरा होने से पहले पहले कोई औरत इसको दूध पिलाएगी तो क्या अब हुरमत साबित होगी? क्या अब हुरमत साबित होगी? अभी तक अगरचे मुद्दत रजात है लेकिन यह बच्चा दूध छोड़ चुका है, अब यह दूसरी गजा खाता है, तो क्या अब भी मुद्दत के अंदर कोई औरत दूध पिलाएगी तो रजाहत साबित हो जाएगी और हुरमत आ जाएगी? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि नहीं, मुद्दत से पहले अगर दूध छुड़ा भी दिया जाए उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि उस मुद्दत के अंदर गजा के बदल जाने के बावजूद भी अगर कोई औरत इस बच्चे को इस मुद्दत में दूध पिलाएगी तो हुरमत साबित हो जाएगी, वह औरत इसकी रिजाई मां बन जाएगी। तो कहते हैं वला युअतबरुल फितामु क़ब्लल मुद्दति, फितम का माना है दूध छुड़ाना, वला युअतबरुल फितामु, और कोई एतबार नहीं है दूध छुड़ाने का क़ब्लल मुद्दति मुद्दत से पहले, इल्ला फी रिवायतिन अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, मगर एक रिवायत में इमाम साहिब से, यानी इमाम साहिब की एक रिवायत के मुताबिक इसका एतबार है। इदस्तुग़निया अन्हु, जब बच्चा दूध से बेनियाज हो जाए, बच्चे को दूध की हाजत न रहे, तो फिर आप चूंकि बच्चा दूध से बेनियाज हो चुका है दूसरी गजा की तरफ मुंतकिल हो चुका है, लिहाजा अब मुद्दत के अंदर कोई औरत दूध पिलाए भी तो भी हुरमत साबित नहीं होगी क्योंकि बच्चे की गजा बदल चुकी है भाई। ये एक रिवायत है इमाम साहब की, लेकिन बतला दिया इन्होंने कि राजह रिवायत पहली ही है कि मुद्दत के अंदर दूध छुड़ाने का कोई एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला फी रिवायतिन अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, मगर एक रिवायत में इमाम साहिब से, इज़ास्तुग़निया अन्हु, जब बच्चा दूध से बेनियाज हो जाए, जब बच्चा दूध से बेपरवाह हो जाए, वजहुहु, अब इसकी भी वजह जिक्र फरमा रहे हैं कि इमाम साहिब की एक रिवायत क्या आई है, उसकी क्या वजह है कि दूध अगर छुड़ा दिया मुद्दत के अंदर तो फिर रिजात का एतबार नहीं है। तो कहते हैं वो वजहू, और इस कौल की वजह यह है, इनकिताउन नुशूई बितगयुरिल गजाई, इसलिए क्योंकि नशोनुमा मुनक़ते हो चुकी है गजा के बदलने की वजह से, अब दूध के जरिए जो नशोनुमा थी वो मुनक़ते हो गई है गजा के बदलने की वजह से, अब दूसरी गजा के जरिए बदन की नशोनुमा हो रही है। वहल युबाहुल इरज़ाउ बादल मुद्दती, जी मैंने आपको बतलाया कि मुद्दत रजात के बाद मां का बच्चे को दूध पिलाना हराम है, अब वही बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वहल युबाहुल इरज़ाउ बादल मुद्दती, और क्या मुबाह है दूध पिलाना बादल मुद्दती मुद्दत के बाद, क्या मुद्दत के बाद दूध पिलाना मुबाह है जायज है? कद क़ीला, तो तहकी कहा गया है, ला युबाहु जायज नहीं है, लिअन्ना इबाहतहु जरूरियतुन, इसलिए क्योंकि इस दूध का मुबाह होना यह जरूरत की वजह से था, लिकौनिही जुज अल आदमी, ये बवजे आदमी का जुज होने के। भाई देखिए याद रखो इंसान मुअज्जज और मोहतरम है, लिहाजा इंसानी जुज से इंतफा जायज नहीं, इंसानी जूस से फायदा उठाना, उसको अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं। और यह दूध भी क्या है, यह इंसानी जूस है, औरत का जूस है, लिहाजा इससे भी फायदा उठाना जायज नहीं। हां, जरूरत और हाजत की वजह से जायज है, जैसे छोटे बच्चे में जरूरत है तो उसके लिए जायज है, और जब जरूरत पूरी हो गई फिर उसके बाद जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्ना इबाहतहु जरूरियतुन, इसलिए क्योंकि इस दूध का जो मुबाह होना था जरूरियतुन, वो जरूरत की वजह से था, बच्चे को उसकी जरूरत और हाजत थी, तो वैसे जायज नहीं है। लिकौन ही जुज अल आदमी, ये बवजह आदमी का जुज होने के। आगे देखिए, قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ويحرم من الرضاع, کہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں, ما يحرم من النسب, جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, للحدیث الذی روینا, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی۔ پیچھے بھائی حدیث آئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ آگے دیکھیے, الا ام اخته من الرضاع, مگر اس کی رضاعی بہن کی ماں, فانه يجوز ان يتزوجها, اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ اس کے ساتھ انسان نکاح کر لے, ولا يجوز ان يتزوج, اور جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے, ام اخته من النسب, نسبی بہن کی ماں کے ساتھ۔ بھئی دیکھیے, اب استثناء کر رہے ہیں, کچھ فرق ہے, کچھ فرق ہے۔ حدیث میں تو آ گیا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں, البتہ کچھ جگہ فرق ہے, وہ فرق بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں الا ام اخته من الرضاع, الا ام اخته من الرضاع, یہ من الرضاع کو جوڑیں اختہ کے ساتھ, من الرضاع کو کس سے جوڑیں, اختہ سے, اختہ من الرضاع, اس کی جو رضاعی بہن ہے۔ الا ام اخته من الرضاع, مگر اس کی رضاعی بہن کی ماں, رضاعی بہن کی ماں جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی, رضاعی بہن کی ماں حرام نہیں۔ جیسے دیکھو, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں, انہوں نے دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا, تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن بن گئے, رضاعی بھائی بہن۔ اب دیکھو یہ انہوں نے کس کا دودھ پیا ہے, ایک تیسری عورت کا دودھ پیا ہے, نہ یہ لڑکے کی ماں ہے اور نہ لڑکی کی ماں ہے, توجہ ہے؟ تو یہ جس عورت کا دودھ پیا یہ ان دونوں کی رضاعی ماں بن گئی, اور یہ دونوں لڑکا اور لڑکی آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے۔ تو یہ لڑکی تو اس لڑکے کی رضاعی بہن بنی ہے, لیکن اس لڑکی کی ماں کے ساتھ تو لڑکے کا کوئی رشتہ نہیں, وہ نہ تو اس کی حقیقی ماں ہے اور نہ اس نے اس کا دودھ پیا ہے, لہذا وہ اس لڑکے کے لیے ابھی بھی اجنبیا ہے۔ یہ لڑکا اپنی اس رضاعی بہن کی اس حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے الا ام اختہ من الرضاع, مگر اپنی رضاعی بہن کی ماں, فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا, اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے, وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ, لیکن اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ وَلَا, توجہ سے یہ عبارت دیکھیں, وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ, یہ مین النسب کو اختہ سے جوڑیں, اپنی نسبی بہن, اختہ من النسب کا کیا ترجمہ ہوگا, اپنی نسبی بہن۔ تو ولا یجوز ان یتزوج ام اختہ من النسب, اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے وہ شخص اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ, نسبی بہن کی ماں, نسبی بہن کی ماں۔ یاد رکھو, بہن یا تو حقیقی ہوتی ہے یا علاتی ہوتی ہے یا اخیافی ہوتی ہے۔ نسبی بہنیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں, جن سے نسب والا تعلق ہے, رضاعت والا تعلق نہیں۔ तो ये जो नस्बी बहनें हैं ये तीन तरह हो सकती हैं, या तो ये हकीकी बहन होगी या अल्लाती बहन होगी या अख्याफी बहन। हकीकी बहन किसे कहेंगे कि ये लड़का और लड़की दोनों के मां बाप एक ही हैं, यानी सगी बहन। हकीकी बहन लड़की के जो मां बाप हैं वही इस लड़के के भी मां बाप हैं, तो ये हकीकी भाई बहन हुए। और एक सूरत यह है कि ये जो लड़का और लड़की हैं इनका बाप तो एक है लेकिन माएं अलग अलग हैं।
जी।
इस बाप की दो बीवियां हैं, एक बीवी से ये लड़का है और दूसरी बीवी से लड़की है, तो ये जो भाई बहन हैं ये आपस में अल्लाती भाई बहन कहलाते हैं, यानी बाप तो एक है लेकिन माएं अलग अलग हैं। तीसरी सूरत है अख्याफी बहन भाई। अख्याफी बहन भाई इसे कहते हैं कि लड़के और लड़की की मां तो एक हो लेकिन बाप अलग अलग हो। मसलन एक औरत ने एक शख्स से निकाह किया था, उससे एक बेटी पैदा हुई, फिर बाद में उस शख्स का इंतकाल हुआ या उसने तलाक दे दी, और बाद में इस औरत ने किसी और शख्स से निकाह किया और उस शख्स से फिर इस औरत का एक बेटा हुआ। तो अब ये जो बेटा और बेटी हैं इन दोनों की मां तो यही औरत है लेकिन दोनों के बाप अलग अलग हैं, इसको कहते हैं अख्याफी भाई बहन। तवज्जो है, मालूम हुआ बहनें कितनी किस्म की हो गई, तीन, या हकीकी बहन या अल्लाती बहन या अख्याफी बहन। अब जरा गौर कीजिए बात क्या जिक्र हो रही है कि रिजाई बहन की मां से निकाह जायज है। तवज्जो है, रिजाई बहन की मां के साथ निकाह जायज है। मैंने मिसाल दे दी कि एक लड़का और लड़की है, उन्होंने बचपन में एक तीसरी औरत का दूध पिया, तो ये आपस में भाई बहन बने हैं, लेकिन इस लड़की की मां जो है वो तो इस लड़के की मां नहीं बनी, लड़के ने उसका दूध तो नहीं पिया भाई, तो इस रिजाई बहन की जो मां है वो इसके लिए अजनबी है, ये उसे निकाह कर सकता है। तवज्जो है, लेकिन नस्बी बहन की मां के साथ निकाह जायज नहीं। रिजाई बहन की मां के साथ निकाह जायज है लेकिन नस्बी बहन की मां के साथ निकाह जायज नहीं, इसलिए क्योंकि नस्बी बहन जो है या तो वह हकीकी बहन होगी या अल्लाती बहन होगी या अख्याफी बहन होगी, तीनों नस्बी बहनें हैं ना, तो अगर यह नस्बी बहन हकीकी बहन हुई तो फिर इसकी मां के साथ भी निकाह जायज नहीं, क्योंकि इसकी मां तो इसी लड़के की भी मां है। जब हकीकी बहन है तो दोनों के मां बाप एक ही हैं भाई। तो ये देखो, ये जो नस्बी हकीकी बहन है इसकी मां के साथ निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो तो इस लड़के की भी हकीकी मां है। तवज्जो है, दूसरी सूरत कि ये दोनों अख्याफी भाई बहन हैं, तो इस सूरत में ये जो अख्याफी बहन है इसकी मां के साथ इस लड़के का निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो इस लड़के की वो भी हकीकी मां है।
जी।
दोनों की मां एक ही है। तवज्जो है, मालूम हुआ हकीकी भाई बहन हो उनकी भी मां वही एक ही औरत है, और अख्याफी भाई बहन हो उनकी मां भी वही औरत है। तो देखा, नस्बी बहन की मां, चाहे वो नस्बी बहन हकीकी हो या अख्याफी हो, इस नस्बी बहन की मां इस लड़के की भी मां है, इसकी हकीकी मां है, लिहाजा उसके साथ निकाह जायज नहीं। अब रह गए अल्लाती वाली सूरत। अगर ये लड़का और लड़की आपस में क्या है, अल्लाती भाई बहन है, तो ये जो नस्बी अल्लाती बहन है इसकी मां के साथ भी इस लड़के का निकाह जायज नहीं, क्योंकि ये इन दोनों का बाप एक ही है। ये दोनों अल्लाती भाई बहन है ना, मालूम हुआ बाप एक है और दोनों की माएं अलग अलग हैं, तो ये जो लड़का है इसका अपनी इस नस्बी अल्लाती बहन की मां के साथ भी निकाह जायज नहीं। अगरचे वो इस लड़के की मां नहीं है लेकिन फिर भी इस लड़के का उसे निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो इसके बाप की मौतूआ है, वो बाप की दूसरी बीवी है ना, तो वो दूसरी बीवी है तो वो बाप की मौतूआ है, जिसके साथ बाप सोहबत कर चुका है। और कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, कि तुम लोग निकाह न करो अपने आबा की बीवियों से, जिनके साथ तुम्हारे आबा ने निकाह किया है उनसे तुम निकाह न करो। तो देखा, मालूम हुआ अपनी नस्बी अल्लाती बहन की जो मां है उसके साथ भी इस लड़के का निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो इसके बाप की मौतूआ है, वो इसकी मां तो नहीं लेकिन इसके बाप की मौतूआ और मनकूहा है भाई। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ नस्बी बहन चाहे हकीकी हो चाहे अल्लाती हो चाहे अख्याफी हो उसकी मां के साथ निकाह जायज नहीं, क्योंकि या तो वो इस लड़के की हकीकी मां ही होगी या वो इसके बाप की मौतुआ होगी। तो नस्बी बहन की मां के साथ निकाह जायज नहीं, लेकिन रिजाई बहन की मां के साथ निकाह जायज है। तो यह माना है कि इल्ला उम्मा उख्तिही मिनर रज़ाई, मगर रिज़ाई बहन की मां के साथ, फ़इन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजहा, क्योंकि जायज है कि उसके साथ वो निकाह कर ले, वला यजूज़ु अन यतज़व्वज उम्मा उख्तिही मिनन नसबी, और जायज नहीं है कि ये अपनी नस्बी बहन की मां के साथ निकाह करे, लिअन्नहा तकूनु उम्महु अव मौतूअत अबीही, इसलिए क्योंकि ये जो नस्बी बहन की मां है, तकूनु उम्महु, या तो इस लड़की की मां होगी, अव मौतूअत अबीही, या इसके बाप की मौतुआ होगी यानी मनकूहा होगी। बिखिलाफ रजाई, बखिलाफ रजायत के वहां पर जो है वो जो रिजाई बहन की मां है वो ना तो इस लड़के की हकीकी मां है और ना इसके बाप की मौतुआ है, तो वहां निकाह जायज है भाई। आगे देखिए, वयजूजु तज़व्वुजु उख्तिबनी मीनर रजा, ये इब्नी ही के साथ मीनर रजा को जोड़ें, इब्नी ही मीनर रजा क्या माना, अपना रिजाई बेटा, इब्नी ही के साथ हा जमीर भी तो है उसी शख्स का, रिजाई बेटा, तो कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजु उख्तिबनी ही मीनर रजाई, इब्नहु मीनर रजा क्या हुआ, रिजाई बेटा, तो कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजु उख्तिबनी ही मीनर रजाई, और अपने रजाई बेटे की बहन से निकाह जायज है, अपने अपने रजाई बेटे की बहन से निकाह जायज है, वला यजूजु ज़ालिका मीनन नसब, लेकिन नसब में ऐसा जायज नहीं, यानी नस्बी बेटे की बहन से निकाह जायज नहीं, रजाई बेटे की बहन से निकाह जायज है। मैंने बतलाया था कि दूध पिलाने वाली की तरफ से सब रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन दूध पीने वाले में सिर्फ ज़ौजान व फुरू, मियां बीबी और उनकी औलाद। जैद ने बचपन में एक औरत का दूध पिया तो यह औरत उसकी रिजाई मां बन गई और इस औरत का खावंद इसका रिजाई बाप बन गया, तवज्जो है, तो जैद इनका रिजाई बेटा बन गया। तो यह हुरमत सिर्फ जैद के लिए है या जैद की बीवी के लिए है, जैद और जैद की बीवी अपने रिजाई मां बाप पर हराम हैं, जैद के और जो भाई बहन हैं उनके साथ तो कोई हुरमत नहीं। तो देखा, अपने रिजाई बेटे की बहन, रिजाई बेटा है उसकी बहन के साथ तो कोई हुरमत नहीं है, लिहाजा उसके साथ सुसर निकाह करना चाहता है वो कर सकता है, वो उसके लिए अजनबिया ही है। ये दूध पीने वाला तो इसका रिजाई बेटा बना है, लेकिन इसकी बहन तो उसकी रिजाई बेटी नहीं बनी, वो अभी भी उसके लिए अजनबिया है। तो ये सुसर, ये जो रिजाई बाप है, ये अपने इस रिजाई बेटे की बहन के साथ निकाह कर सकता है, लेकिन नस्बी बेटे की बहन उसके साथ निकाह जायज नहीं। नस्बी बेटे की बहन, नस्बी बेटे की बहन, नस्बी बेटे की बहन कौन सी हो सकती है, तीन हो सकती हैं, या हकीकी होगी या अल्लाती होगी या अख्याफी। ये जैद का बेटा है, जैद के बेटे की एक बहन है, वो इसकी या तो हकीकी बहन होगी या अल्लाती या अख्याफी। तो नस्बी बेटे की बहन से निकाह जायज नहीं, इसलिए क्योंकि नस्बी बेटे की जो बहन है या वो उसकी हकीकी बहन होगी या अल्लाती बहन होगी या अख्याफी। अगर नस्बी बेटे की हकीकी बहन है वो तो इसी आदमी की बेटी है, वो तो इसी आदमी की बेटी है, लिहाजा इस हकीकी बेटे की, इस हकीकी बहन के साथ निकाह जायज नहीं। या वो इसकी अल्लाती बहन होगी, वो हकीकी बेटे की अल्लाती बहन होगी, तो वो भी इसी आदमी की बेटी है, क्योंकि दोनों का बाप एक ही है भाई, मां अलग हैं लेकिन बाप तो एक। तो ये जो हकीकी बेटे की अल्लाती बहन है ये इसी आदमी की बेटी है, तो ये भी हकीकी बेटी है, इसके साथ निकाह जायज नहीं। और तीसरी सूरत ये है कि इस हकीकी बेटे की अख्याफी बहन हो, क्या हो, अख्याफी बहन हो, उसके साथ भी इस आदमी के लिए निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो शख्स इसकी मां के साथ सोहबत कर चुका है। देखो कैसे, एक औरत है, उसने पहले किसी और आदमी से निकाह किया था, उससे इसकी एक बेटी हुई, फिर इस औरत ने जैद से निकाह कर लिया, अब इस औरत का एक बेटा पैदा हुआ, तो ये जो इस आदमी का बेटा है जैद, ये इसका हकीकी बेटा है, और ये जो बहन है इसकी, ये इसकी अखियाफी बहन है, क्योंकि मां दोनों की एक है लेकिन बाप अलग अलग है, तवज्जो है। तो ये जो हकीकी बेटे की अखियाफी बहन है, ये इस आदमी की रबीबा कहलाती है। यानी एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और पिछले खावन से औरत की एक बेटी है, तो वो इसकी क्या कहलाती है? रबीबा। और मैंने आपको जाब्ता बतलाया था, मुहर्रमात का जहां जिक्र हुआ था वहां आपने पढ़ा था कि जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो निकाह करते ही उस औरत की मां इस आदमी पर हराम हो जाती है। तवज्जो है। एक आदमी एक औरत से निकाह करता है, निकाह करते ही इस औरत की जो मां है वो इस आदमी की सास बन गई, वो इसकी महरम बन गई, वो मां के दर्जे में हो गई, लिहाजा अब इस औरत को वो छोड़ भी दे, अब इस औरत की मां के साथ जिंदगी भर निकाह की कोई सूरत नहीं, क्योंकि वो इसकी सास बन चुकी है। तवज्जो है। तो मालूम हुआ किसी औरत से निकाह करते ही सास हराम हो जाती है, लेकिन एक आदमी एक औरत से निकाह करता है और उसकी पिछले खावन से एक बेटी मौजूद है, ये इसकी रबीबा कहलाती है। रबीबा। तो एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया और उसके पिछले खावन से एक बेटी मौजूद है, तो सिर्फ निकाह करने से यह बेटी हराम नहीं, सिर्फ निकाह करने से यह बेटी हराम नहीं, यह आदमी इस औरत को तलाक दे दे, अभी सोहबत नहीं कि इस औरत को तलाक दे दे और इसकी बेटी से निकाह करना चाहता है तो कर सकता है। हां, अगर इस आदमी ने इस औरत से सोहबत कर ली है तो अब इसकी बेटी भी हराम हो गई। तो रबीबा कब हराम होती है किसी इंसान पर? जब वो अपनी उस बीवी से सोहबत कर लेगा। बात समझ में आ गई? हासिले कलाम क्या? जब एक शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो निकाह करते ही इस औरत की मां हराम, लेकिन निकाह करते ही औरत की बेटी अभी हराम नहीं हुई, वो कब हराम होगी? जब सोहबत कर लेगा अपनी इस बीवी से, सोहबत करेगा तो अब बेटी भी क्या हो जाएगी? हराम। अब वहां भी निकाह की कोई सूरत नहीं जिंदगी भर के लिए। वो इस औरत को तलाक देकर अब उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है, नहीं भाई, आप इस लड़की की मां के साथ आप सोहबत कर चुके हैं, अब ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए आप पर हराम हो चुकी है, ये आपके लिए बेटी के दर्जे में हो गई, सोतेली बेटी। तवज्जो है। फिर समझें, हासिले कलाम क्या? किसी औरत से जैसे ही कोई आदमी निकाह करेगा, निकाह करते ही उस औरत की मां सास बन गई, हराम हो गई, लेकिन इस औरत की बेटी निकाह करते ही हराम नहीं हुई, बल्कि वो जब सोहबत कर लेगा अपनी बीवी से वो आदमी, तो फिर उसकी बेटी हराम हो जाएगी, वो रबीबा हराम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब बात ये चल रही थी कि रिजाई बेटे की बहन के साथ तो निकाह हो सकता है, रिजाई बेटे की बहन, क्योंकि रिजाई बेटा उसने दूध पिया है, वो रिजाई बेटा बना है, उसकी बहन ने तो दूध नहीं पिया, उससे तो निकाह हो सकता है, लेकिन हकीकी बेटे की जो बहन है, अगर वो हकीकी बहन है या अल्लाती बहन है, वो तो फिर इसी आदमी की बेटी है। नहीं, तवज्जो, मेरा ख्याल है। नस्बी बेटे की जो बहन है, नस्बी बेटे की बहन में मैंने आपको बताया तीन सूरतें हो सकती हैं। नस्बी बेटे की जो बहन है, या वो हकीकी बहन होगी, या अल्लाती बहन होगी, या अख्याफी बहन होगी। अगर वो हकीकी बहन है तो इसके साथ इस बच्चे के बाप का निकाह जायज नहीं, क्योंकि ये तो उसी की बेटी है। हकीकी बहन है ना, तो ये इसी आदमी की बेटी है, तो नस्बी बेटे की हकीकी बहन से निकाह जायज नहीं। इसी तरह नस्बी बेटे की अल्लाती बहन से भी निकाह जायज नहीं, क्योंकि वो भी इसी आदमी की बेटी है, क्योंकि बाप तो दोनों का एक है, अगरचे मां अलग अलग हैं। तो नस्बी बेटे की अल्लाती बहन से भी निकाह जायज नहीं। तीसरी सूरत यह है कि नस्बी बेटे की अखियाफी बहन है। नस्बी बेटे की अखियाफी बहन का मतलब यह है कि दोनों की मां एक है, बाप अलग अलग है। तो जब इस औरत से इस आदमी का यह बेटा हो चुका है जिसकी यह अखियाफी बहन है, तो मालूम हुआ इस औरत के साथ यह आदमी सोहबत कर चुका है, जब भी तो यह बेटा पैदा हुआ भाई, तो लिहाजा इसकी अखियाफी बहन जो है वो इस आदमी की रबीबा हुई। और रबीबा इंसान पर कब हराम होती है? जब अपनी उस बीवी के साथ इंसान सोहबत कर ले, और यहां यह आदमी इस औरत से सोहबत कर चुका है, जब भी तो यह बच्चा पैदा हुआ है उसका, यह जो बेटा है, तो ये जो नस्बी बेटा है इसकी अख्याफी बहन जो है वो इस आदमी की रबीबा है, लेकिन ये इस आदमी पर हराम हो चुकी है क्योंकि वो रबीबा की मां के साथ सोहबत कर चुका है। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ नस्बी बेटे की बहन इंसान पर हराम होती है, चाहे हकीकी बहन हो, चाहे अल्लाती बहन हो, चाहे अख्याफी बहन हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयजूज़ु तज़व्वुजु उख्ति बनीही मिनर रज़ाई, और अपने रिजाई बेटे की बहन से निकाह जायज है। वला यजूज़ु ज़ालिका मिनन नसबी, और नसब में ऐसा जायज नहीं। लिअन्नहु लम्मा वतिअ उम्महा, इसलिए क्योंकि जब इस आदमी ने उस लड़की की मां से सोहबत कर ली है, सोहबत कर ली है जब भी तो ये बेटा पैदा हुआ है उससे। अन्नहु लम्मा वतिअ उम्महा, इसलिए क्योंकि इस आदमी ने जब इस लड़की की मां से सोहबत कर ली है तो हरुमत अलैही, तो उस पर यह बेटी हराम हो गई है, रबीबा उस पर हराम हो गई है। वलम यूजद हादल माना फिर रजाई, और रजायत के अंदर तो यह इल्लत नहीं पाई गई। रिजाई बेटे की बहन के साथ तो निकाह जायज है क्योंकि रिजाई बेटे की बहन, रिजाई बेटे की बहन, ये रिजाई बेटा बना है, इसकी बहन ने तो दूध नहीं पिया, लिहाजा वो इंसान पर हराम नहीं। तो कहते हैं वलम यूजद हादल माना फिर रजाई, और ये वाला माना यानी ये वाली इल्लत और ये वाला सबब जो है रजाअत में तो नहीं पाया गया क्योंकि रिजाई बेटे की मां तो इस आदमी की मौतुआ नहीं। नस्बी बेटे की बहन, नस्बी बेटे की बहन तो इस आदमी की मौतुआ है, लेकिन रिजाई बेटे की जो बहन है उसकी मां तो इस आदमी की मौतुआ नहीं है, लिहाजा वो हराम नहीं है भाई। आगे देखिए वम्रअतु अबीही अविम्रअतु बनीही मिनर रज़ाई ला यजूज़ु अन यतज़व्वजहुमा। वम्रअतु अबीही अविम्रअतु बनीही मिनर रज़ाई, ये मिनर रज़ा को दोनों से जोड़ें। पहले क्या आया वम्रातु अबी ही मीनर रजा, यहां भी मीनर रजा जोड़ दें, अविम्रातु बनी ही मीनर रजा भाई, तवज्जो है। तो पहले क्या है वम्रातु अबी ही, ये अबी ही के साथ मीनर रजा को जोड़ें। वम्रातु अबी ही मीनर रजाई, अपने रिजाई बाप की बीवी, अपने रिजाई बाप की बीवी। अविम्रातु बनी ही मीनर रजाई, यहां मीनर रजा को इब्नी ही से जोड़ें, और अपने रिजाई बेटे की बीवी। आप तवज्जो है, ये जो दोनों हैं ला यजूज़ु अन यतज़व्वजहा, जायज नहीं है कि इनसे निकाह करे। कौन कौन? रिजाई बाप की बीवी
जी।
रिजाई बाप की बीवी भाई, रिजाई बाप की बीवी क्यों हराम? रिजाई बाप की बीवी भाई, देखो ना, एक बच्चे ने एक औरत का दूध पिया, ये औरत इसकी रिजाई मां बन गई, तवज्जो है, और इसका खावंद इसका रिजाई बाप बन गया। इस रिजाई बाप की एक और बीवी है, उसका तो दूध बच्चे ने नहीं पिया, तो क्या उससे निकाह कर सकता है ये बच्चा? कहते हैं नहीं, उससे भी निकाह नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो इसके बाप की मौतुआ है
जी।
वो क्या है? और कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम, कि तुम निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है। मालूम हुआ अपने रिजाई बाप की दूसरी बीवी के साथ भी निकाह की कोई सूरत नहीं है। और नीज वम्रअतु बनीही मिनर रज़ाई, अपने रिजाई बेटे की बीवी, रिजाई बेटे की बीवी। एक आदमी है, उसका रिजाई बेटा है, उसने इसकी बीवी का दूध पिया। इस बेटे की जो बीवी है, ये जो रिजाई बेटे की बीवी है, इसके साथ भी ये आदमी निकाह नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके बहू के दर्जे में हो गई। आपने पढ़ा भाई कि दूध पिलाने वाली की तरफ से तो सब रिश्तेदार बन जाते हैं, और दूध पीने वाले की तरफ से ज़ौजान और फुरू, मियां बीवी और औलाद। तो ये लड़का भी हराम हुआ अपने रिजाई मां बाप पर, और इसकी जो बीवी होगी वो भी हराम है। जैसे नस्बी बेटे की बीवी जो है वो सुसर पर हराम होती है, इसी तरह रिजाई बेटे की बीवी भी सुसर पर हराम है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वम्र अतु अबी ही अविम्र अतु बनी ही मीनर रजाई, और इसी तरह जो है अपने रिजाई बाप की बीवी और अपने रिजाई बेटे की जो बीवी है, ला यजूज़ु अन यतज़व्वजहा, जायज नहीं है कि उनसे कोई निकाह करे। कमा ला यजूज़ु ज़ालिका मिनन नसबी, जैसे कि ये नसब की वजह से भी जायज नहीं है, जैसे नस्बी बाप की दूसरी बीवी के साथ निकाह जायज नहीं, और जैसे नस्बी बेटे की बीवी के साथ सुसर के लिए निकाह जायज नहीं। तो कहते हैं कमाला यजूज़ु ज़ालिका मिनन नसबी, जैसे कि ये नसब की वजह से जायज नहीं है। लिमा रवैना, बवजह उस हदीस के जो हमने रिवायत कर दी, वो जो हदीस पीछे आई थी, यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, कि रजाअत की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। आगे देखिए, वदिक्रुल असला बिफिन नस्सिल इसकाति अतिबारी तबन्नी अलामा बैयन्नाह। भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वहलाइलु अबनाइकुम अल्लदीन मिन असलाबिकुम, वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां, अल्लदीन मिन असलाबिकुम, जो तुम्हारी पुश्तों से हैं, यानी जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं। हलाइल जमा है हलीला की, बीवी को कहते हैं, यानी वो औरत जो बेटे के लिए हलाल है, यानी उसकी बीवी मुराद है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वहलाइलु अबनाइकुमुल्लदीन मिन असलाबिकुम, और तुम्हारे जो हकीकी बेटे हैं उनकी बीवियां, यानी वो भी तुम पर हराम हैं। उन औरतों का जिक्र हो रहा है कुरान में जो इंसान पर हराम है, तो उनमें जिक्र फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां, क्योंकि वो तुम्हारी बहू है। भाई बात समझ में आ रही है? तो यहां इश्काल होता है, ये पहले भी ये बात गुजर चुकी है। यहां तो आयत के अंदर मिन असलाबिकुम की कैद है, यानी वो बेटे जो तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं। तो इस आयत से तो सिर्फ इतना पता चला कि हकीकी बेटों की बीवियां हराम हैं इंसान पर, क्योंकि इसमें मिन असलाबिकुम की कैद आई। इससे तो रिजाई बेटे की बीवी की हुरमत साबित नहीं होती, हकीकी बेटे की बीवी तो हराम है, लेकिन रिजाई बेटे की बीवी तो इस आयत से मालूम होता है हराम नहीं है। तो उसका जवाब पहले गुजर चुका कि ये जो मिन असलाबिकुम की कैद आई थी आयत के अंदर, ये मुतबन्ना को निकालने के लिए है। बाज़ औकात एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपना मुंह बोला बेटा बना लेता है, उसको मुतबन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतबन्ना, यानी मुंह बोला बेटा। तो ये जो मिन असलाबिकुम की कैद आई है, ये मुतबन्ना को निकालने के लिए है कि तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां तुम पर हराम हैं। मुतबन्ना जो हैं, जिनको तुमने अपना मुंह बोला बेटा बनाया है, उनकी बीवियां तुम पर हराम नहीं, क्योंकि तुमने उनको बेटा बनाया है। तो तुम्हारे बेटा बनाने से वो तुम्हारे कोई हकीकी बेटे नहीं बन गए भाई, तो उनकी बीवियां तुम पर हराम नहीं। तो ये मिन असलाबिकुम की कैद किस लिए आई है आयत में? मुतबन्ना को निकालने के लिए। बात समझ में आ गई। और बाकी रिजाई बेटे की बीवी, तो वो तो हदीस में आ गया कि रिजा से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं, और नस्बी बेटे की बीवी हराम है, अभी आयत में आपने पढ़ लिया, नस्बी बेटे की बीवी हराम। जब नस्बी बेटे की बीवी हराम है, तो हदीस में क्या आया? जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं, वो रिजात की वजह से भी हराम होते हैं। तो लिहाजा रिजाई बेटे की बीवी भी हराम होगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वदिक्रुल असलाब फिन नस, और नस के अंदर यानी आयत के अंदर जो असलाब यानी पुश्तों का जिक्र आया है, असलाब का जो जिक्र आया है नस के अंदर, इसकाति एतबारी तबन्नी, ये मुतबन्ना होने के एतबार को साकित करने के लिए है। अलामा बैयन्नाहू, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। दलील समझ में आ गई? आयत से सिर्फ क्या पता चला? हकीकी बेटे की बीवी हराम है। और ये हकीकी की कैद क्यों लगाई? मुतबन्ना को निकालने के लिए। किसको? मुतबन्ना की बीवी हराम नहीं। बाकी रिजाई बेटा, रिजाई बेटा उसकी बीवी भी हराम है, क्योंकि हदीस में क्या आया कि रिजा से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं, और नस्बी बेटे की बीवी तो हराम है, कुरान से साबित है। तो रिजाई बेटे की बीवी भी हराम होगी, क्योंकि रिजा से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। दलील समझ में आ गई। आगे देखिए वलबनुल फहल यतअल्लकु बिहि तहरीम। भाई याद रखो, ये जो औरत की छाती में दूध उतर आता है, वजह इसकी यह है कि खावन इसके साथ सोहबत करता है और उसकी वजह से अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमाते हैं और औरत की छाती में दूध उतर आता है। मालूम हुआ वो मर्द जो है वो इस दूध के उतरने का सबब बना है। वो सोहबत ना करता तो औलाद भी ना होती और दूध भी ना आता, तो ये मर्द सबब बना है इस दूध के उतरने का। लिहाजा जब ये औरत किसी और बच्चे को दूध पिलाएगी तो ये औरत उसकी रिजाई मां बन गई, और जब ये औरत इसकी रिजाई मां बनी है तो ये खावन जिसकी वजह से दूध उतरा था ये इस बच्चे का रिजाई बाप बन जाएगा, ये इस बच्चे का रिजाई बाप बन जाएगा, क्योंकि इस दूध का सबब यह खावंद बना है। लिहाजा यह हुरमत सिर्फ औरत तक नहीं रहेगी बल्कि खावंद भी इस बच्चे का रिजाई बाप बन जाएगा, वहां भी हुरमत आ जाएगी। तो यह माना है वला बनुल फहल यतअल्लकु बिहि तहरीम। फहल, फहल कहते हैं भाई नर को, नर यानी मुजक्कर जो है, और यहां फहल से मुराद मर्द है। तो कहते हैं वल्ला बनुल फहली, और मर्द का दूध, मर्द का दूध यानी वो दूध जिसका सबब मर्द बना है, तवज्जो है। तो कहते हैं वल्ला बनुल फहली यतअल्लकु बिहि तहरीम, और वो दूध जिसका सबब मर्द बना है उसके साथ भी तहरीम का ताल्लुक होगा। वह हुआ अंतुर्ज़िअल मरअतु सबियतन, और वो ये कि औरत दूध पिलाए सबियतन एक बच्ची को, फतहरुमु हादिहि सबियतु अला ज़ौजिहा व अला आबाईहि व अबनाईहि, तो हराम हो जाएगी ये बच्ची अला ज़ौजिहा उस औरत के खावंद पर भी, उस औरत के खावन पर भी वो बच्ची क्या हो गई, हराम, क्योंकि वो रिजाई बाप बन गया। और नीज सिर्फ खावन पर हराम नहीं हुई बल्कि खावन के उसूल फुरुआ जो हैं यानी खावन के आबा, वो इस बच्ची के दादा दादी बन गए, वो बच्ची के दादा दादी बन गए, वो भी इस पर हराम। और इस खावन की जो औलाद है वो इस बच्ची के रिजाई भाई बहन बन गए, वो भी इस पर हराम। तो सिर्फ दूध पिलाने वाली पे हुरमत नहीं आई बल्कि उसका खावंद भी इस दूध पीने वाली पर हराम हो गया, और उसके उसूल फुरू भी इस दूध पीने वाली पर हराम हो गए। तो कहते हैं वह हुआ अंतुर्जी अलमर अतु सबियतन, और वो ये कि कोई औरत किसी बच्ची को दूध पिलाए, फतह रुमुहादिहि सबियतु अला ज़ौजिहा, तो ये बच्ची उसके खावन पर भी हराम हो जाती है, वह अला आबाईहि व अबनाईहि, और खावन के आबा और खावन के बेटे जो हैं उन पर भी ये बच्ची हराम हो जाती है। वह यसीरु ज़ौजु, और हो जाता है वो खावन, अल्लदी नज़ल लहा मिन्हु लबनु, कि उतरा है इस औरत का उसकी वजह से दूध, वो खावंद जिसकी वजह से इस औरत का दूध उतरा है, आबन वो बाप हो जाता है, लिल मुरज़ाती दूध पीने वाली के लिए। इसको मुरज़ा पढ़ें भाई ज़ाद के फतहा के साथ, मुरज़िया ज़ाद के कसरा के साथ दूध पिलाने वाली, और मुरज़ा दूध पीने वाली। तो कहते हैं वयसीरु ज़ौजुल लदी नज़ल लहा मिन्हु लबनु अबन लिल मुरज़ाती, और वो खावन जिसकी वजह से इस औरत का दूध उतरा है वो इस मुरज़ा का बाप हो जाता है। वफी अहदी क़ौलि शाफ़ई रहिमहुल्लाहु तआला लबनुल फ़हलि ला युहर्रिमु, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दो कौलों में से एक कौल यह है कि लबनुल फ़हलि ला युहर्रिमु, के मर्द का दूध वो हराम नहीं करता, मर्द का दूध हराम नहीं करता, यानी वो दूध जिसका सबब मर्द बना है, तो ये दूध उस मर्द को हराम नहीं करेगा, उस मर्द की तरफ हुरमत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे ने औरत का दूध पिया। तवज्जो है, इस दूध का सबब बेशक खावंद बना है लेकिन ये दूध जुज है औरत का, तो जब बच्चे ने दूध पिया तो बच्चे की गोश्त और हड्डियां इससे बनी, तो वह दूध बच्चे का जुज बन गया। बच्चे ने औरत का दूध पिया और उस दूध से उस बच्चे की हड्डियां और गोश्त बना, तो वो दूध बच्चे का जूस बन गया, वो दूध, और वो दूध तो औरत का जूस था, तो मालूम हुआ ये बच्चा भी औरत का जूस बन गया। तो जब औरत का जूस बना है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सिर्फ औरत के साथ इसकी हुरमत आएगी, खावंद का तो यह जूस नहीं बना। यह उनका एक कौल है, दूसरे कौल के मुताबिक खावन से भी हुरमत आ जाएगी क्योंकि खावन इस दूध के उतरने का सबब बना है। तो कहते हैं वफी अहद कौलई शाफी रहमहुल्लाह ताला लबनुल फहली ला युहर्रिमु, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दो कौलों में से एक के अंदर लबनुल फहली ला युहर्रिमु, मर्द का दूध जो है वो हराम नहीं करता, लिअन्नल हुरमत लिशुबहतिल बाज़ियति, इसलिए क्योंकि ये जो हुरमत आती है ये जुज़ियत के शुबे की वजह से आती है कि बच्चा क्या है औरत का जूस बन जाता है। वल्ला बनु बाजुहा ला बाजुहू, और ये जो दूध है ये तो उस औरत का जूस है, बाजुहा बास का तर्जमा यहां जूस के करें, वल्ला बनु बाजुहा, और ये जो दूध है ये तो औरत का जूस है, ला बाजुहू आदमी का जूस नहीं, तो बच्चा जो है वो इस औरत का जूस बना है आदमी का जूस नहीं बना, तो लिहाजा सिर्फ औरत पर हराम होगा। भाई आगे देखिए वलाना, और हमारी दलील जो है मा रवैना, वो हदीस है जो हमने रिवायत कर दी, मैंने बतलाया था साहिबे हिदाया बार बार इस हदीस का हवाला देंगे, वो जो रिजात के बाप के शुरू में आई थी, हुजूर क्या फरमाते हैं यहरुमु मीना रजा इमा यहरुमु मीना नसब, रजात की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। और मुझे आप बताइए एक शख्स की एक औरत से शादी हुई और फिर इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये औरत बच्चे की मां और वो खावंद बच्चे का बाप, तो नसब की वजह से ये बच्चा सिर्फ इस मां पर हराम है या इस बाप पर भी हराम है? बाप पर भी हराम है। तो देखो नसब की वजह से मियां बीवी दोनों में हुरमत आती है, तो रिजात में भी मियां बीवी दोनों में हुरमत आएगी, दोनों रिजाई मां बाप बन जाएंगे। वलाना, और हमारी दलील जो है मा रवैना, वो हदीस है जो हमने रिवायत कर दी, वल हुरमतु बिन नसबी मिनल जानिबैनी, और वो हुरमत जो नसब की वजह से होती है वो तो दोनों जानिब से होती है, यानी मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, लिहाजा रिजात की वजह से भी जो हुरमत है वो भी दोनों जानिब से होगी। फकदा बिर रजाई, तो इसी तरह रजात की वजह से भी हुरमत दोनों जानिब से होगी। وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها, और हमारी दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल है जो आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, लियलिज अलैकि अफलहु फइन्नहु अम्मुकि मिनर रज़ाअ, लियलिज अलैकि चाहिए कि दाखिल हो तुझ पर, वलज यलिजु के माने हैं दाखिल होना, लियलिज अलैकि अफलहु अफलह को आपके पास आना चाहिए, लियलिज अलैकि अफलह चाहिए कि दाखिल हो आप पर अफलह, यानी अफलह ये नाम है अफलह, अफलह को आपके पास आना चाहिए, फइन्नहु अम्मुकि मिनर रज़ाअति, इसलिए क्योंकि वो आपके रिजाई चचा हैं, वो आपके रिजाई चचा हैं। भाई देखो रिजाई चचा, चचा किसे कहते हैं? बाप के भाई को। और रिजाई चचा तभी हो सकता है जब इस चचा का भाई रिजाई बाप हो। चचा किसे कहते हैं? बाप के भाई को। तवज्जो है, तो कोई शख्स रिजाई चचा तभी हो सकता है जब इस चचा का जो भाई है वो इसका रिजाई बाप हो।
जी
तवज्जो है, अगर हुरमत सिर्फ औरत से आई है, औरत का खावंद रिजाई बाप नहीं, जब वो रिजाई बाप नहीं तो उसका भाई रिजाई चचा भी नहीं। बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया है, जब इस औरत का खावंद इसका रिजाई बाप बनेगा तो तब ही उस रिजाई बाप का भाई इसका रिजाई चचा बनेगा। भाई बात समझ में आ गई? तो हदीस से क्या मालूम हुआ कि अफलह उनके रिजाई चचा थे। मालूम हुआ हुरमत सिर्फ दूध पिलाने वाली में नहीं है बल्कि उसके खावंद की तरफ भी आ गई, वो इसका रिजाई बाप है। बात समझ में आ गई? कहते हैं वकौलुहु अलैहि सलातु वस्सलामु लिआइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और हमारी दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल है जो आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, लियलिज अलैकि अफलहु चाहिए कि अफलह आपके पास आए, फइन्नहु अम्मुकि मिनर रज़ाअति, इसलिए क्योंकि वो आपके रिजाई चचा हैं। यह हदीस मेरे हाशिए में दी हुई है, यह सारी देख लीजिए। भाई कहते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, कालत दखल अलैया अफलहु बनु अबिल कुएस, हाशिया मिल गया भाई? तो हजरत आयशा फरमाती हैं दखल अलैया के मेरे पास तशरीफ लाए अफलहु बनु अबी कुएस, यहां है अफलाह इबन अबिल कुएस, इबन का लफ्ज है दरमियान में, लेकिन लेकिन उलमा फरमाते हैं कि ये अफलाह जो है अबिल कुएस के बेटे नहीं थे बल्कि ये इनके भाई थे। ये क्या थे? इनके भाई थे। और यही अबुल कुएस हैं जिनकी बीवी का दूध पिया था हजरत आयशा सिद्दीका ने बचपन में। तो अबुल कुएस की बीवी का दूध पिया तो अबुल कुएस क्या बन गए? इनके रिजाई बाप। और उनके भाई जो हैं अफलाह वो क्या बन गए? रिजाई चचा। तो लिहाजा यहां इबन की जगह अख होना चाहिए। तो हजरत आयशा फरमाती हैं दखला अलैया अफलाहू अफलाहू अखू अबिल कुएसी, कि मेरे पास अफलाह जो अबुल कुएस के भाई हैं वो दाखिल हुए, यानी वो तशरीफ लाए। फस्ता तर तुम मिनहू, तो मैंने उनसे पर्दा कर लिया। वो तशरीफ लाए तो मैंने उनसे पर्दा कर लिया। फकालत, वो फरमाने लगे तस्तूरीन मिन्नी व अना अम्मू की, कि तुम मुझसे पर्दा कर रही हो। व अना अम्मू की, और मैं तो आपका चचा हूं। तस्तूरीन मिन्नी व अना अम्मू की, कि तुम मुझसे पर्दा कर रही हो इस हाल में कि मैं तुम्हारा चचा हूं। तो कालत, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कुल, तुम मैंने कहा मिन अईना, कहां से आप, कहां से मेरे चचा हो गए। काला, तो वो फरमाने लगे अरजात की मरातु अखी, कि दूध पिलाया था तुम्हें मेरे भाई की बीवी ने। काला, तो हजरत आयशा फरमाने लगी, देखो भाई हजरत आयशा फकाहत का अंदाजा तो लगाओ। कालत, वो फरमाने लगी इन नमा अरजात निल मर अतु वलम यरजा अनिल रजुलु, कि मुझे तो औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया, यानी वो तो मेरी रिजाई मां बन गई, उनका खावंद कहां से मेरा रिजाई बाप बन गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं फदखला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहद्दस्तुहु, कि मेरे पास हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मैंने उनसे जिक्र किया। फकालत, हुजूर फरमाने लगे इन्नहु अम्मुकि फलयलिज अलैकि, कि वो आपके चचा हैं उनको आपके पास आना चाहिए, यानी वो आपके पास आ सकते हैं। तो ये तो हदीस थी। अब आइए हम सबक पर। कहते हैं वली अन्नहु सबबुन लिनुज़ूलि लबनि मिन्हा फयुज़ाफु इलैहि फी मौज़िउल हुरमत इहतियातन, ये अक्ली दलील जिक्र कर रहे हैं। नकली दलील तो जिक्र कर दी, एक वो हदीस है कि रिजा से वो रिश्ते हराम होते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं, और नसब के अंदर तो मां बाप दोनों हराम होते हैं, तो रिजात में भी मां बाप दोनों हराम होंगे। और नीज फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस भी जिक्र कर दी, अफलाह जब आपके पास तशरीफ लाए थे। और अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। अकली दलील किस चीज की? कि ये जो खावंद है इसके साथ भी हुरमत आएगी, खावंद भी रिजाई बाप बनेगा। तो कहते हैं वली अन्नहु सबबुन लिनुज़ूलि लबनि मिन्हा, और इसलिए क्योंकि खावन जो है वो सबब है इस औरत से दूध के उतरने का। फयुज़ाफु इलैहि फी मौज़िउल हुरमति, लिहाजा इस दूध की निस्बत उस खावन की तरफ भी की जाएगी। फी मौज़िउल हुरमति, हुरमत के मकाम में, एहतियातन बतौर एहतियात के। ये हुरमत का मकाम है भाई, ये क्या है? हुरमत का मकाम है, लिहाजा एहतियात इसी में है कि हुरमत सिर्फ बीवी से न साबित की जाए बल्कि खावन जो इस दूध का सबब बना है उसमें भी हुरमत आनी चाहिए भाई, एहतियात का तकाजा यही है भाई। आगे देखिए वयजूज़ु अन यतज़व्वजा अर्रजुलु बि उख्ति अखीहि मिनर रज़ाई, और जायज है कि कोई शख्स निकाह करे भी उख्ती अखी ही मीनर रजा, मीनर रजात को जोड़े अखी ही से, कि कोई शख्स निकाह करे भी उख्ती अखी ही मीनर रजाई, अपने रजाई भाई की बहन के साथ। जायज है अपने रजाई भाई की बहन के साथ निकाह जायज है। मसलन देखो, मसलन देखो, जैद और अमर दोनों ने बचपन में एक औरत का दूध पिया है जी। तो जैद और अमर आपस में भाई बन गए, रिजाई भाई हैं। तो ये दोनों तो रिजाई भाई हैं, लेकिन जैद की बहन के साथ तो अमर का कोई रिश्ता नहीं, लिहाजा अमर जैद की बहन से निकाह कर सकता है। तो कहते हैं वह यजूज़ु अन यतज़व्वजा अर्रजुलु बि उख्ति अखीहि मिनर रज़ाई, और जायज है कि कोई आदमी निकाह करे अपने रिजाई भाई की बहन के साथ। लिअन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजा बि उख्ति अखीहि मिनन नसबी, इसलिए क्योंकि जायज है कि वो निकाह करे बि उख्ति अखीहि मिनन नसबी, अपने नस्बी भाई की बहन से, अपने अपने नस्बी भाई की बहन से निकाह जायज है तो रिजाई भाई की बहन से भी निकाह जायज है। तवज्जो है, रिजाई भाई की बहन तो मैंने जिक्र कर दिया, जैद और अमर ने एक औरत का दूध पिया है तो जैद और अमर तो रिजाई भाई हो गए, लेकिन जैद की बहन तो इसकी कोई रिजाई या हकीकी बहन नहीं, लिहाजा वो जैद की बहन से निकाह कर सकता है, रिजाई भाई की बहन से निकाह जायज। इसी तरह नस्बी भाई की बहन से भी निकाह जायज है। भाई वो कैसे जायज होगा नस्बी भाई की बहन? याद रखो, नस्बी भाई की बहन, नस्बी भाई की बहन किस तरह? नस्बी भाई तीन तरह का हो सकता है, हो सकता है ये हकीकी भाई हो सकता है ये अल्लाती भाई हो, और हो सकता है ये अखियाफी भाई हो। तो ये जो नस्बी भाई है इसमें तीन सूरतें हैं। फिर इस नस्बी भाई की जो बहन है उस बहन में भी तीन सूरतें हैं, हो सकता है वो इस नस्बी भाई की हकीकी बहन हो सकता है अल्लाती बहन हो सकता है अखियाफी बहन हो। तवज्जो है, तो एक शख्स का जो नस्बी भाई है वो हकीकी भी हो सकता है, अल्लाती भी हो सकता है और अखियाफी भी। अब मसलन फर्ज करो एक शख्स का अल्लाती भाई है, क्या है अल्लाती भाई का क्या माना? कि दोनों का बाप एक है लेकिन माएं अलग अलग हैं। ये जो अल्लाती भाई है इसकी एक अखियाफी बहन है, ये जो अल्लाती भाई है इसकी मां अलग है। तवज्जो है, तवज्जो से समझो, एक आदमी का एक अल्लाती भाई है, जब अल्लाती भाई है तो मालूम हुआ इस भाई की मां अलग है, इस आदमी की मां अलग और अल्लाती भाई की मां अलग है, फिर इस अल्लाती भाई की एक अखियाफी बहन है, यानी दोनों की मां एक है और बाप अलग है। तो ये जो अल्लाती भाई की अखियाफी बहन है इसकी मां भी अलग इस आदमी से और इसका बाप भी अलग। नहीं तवज्जो, फिर समझो, मसलन जैद का अल्लाती भाई है अमर, मनवा जैद की मां अलग है और अमर की मां अलग, फिर इस अमर जो है इसकी एक अखियाफी बहन है, मनवा अमर और उस बहन दोनों की मां एक है, मां एक है लेकिन उस बहन का बाप अलग है, वो तो वो पहले खावन से है वो। तो अब ये जो जैद के अल्लाती भाई की अखियाफी बहन है इसकी मां जैद से अलग है
जी।
और नीस इस जैद के अल्लाती भाई की जो अखियाफी बहन है उसका बाप भी जैद से अलग है। तवज्जो है, तो मालूम हुआ वो लड़की जैद के लिए अजनबिया है, जैद उससे निकाह कर सकता है। उस लड़की की मां भी अलग है और बाप भी अलग है। बात समझ में आ गई? कहते हैं लिअन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजा बि उख्ति अखीही मिनन नसबी, इसलिए क्योंकि जायज है कि वो निकाह करे अपने नस्बी भाई की बहन के साथ। वज़ालिका मिस्लुल अखी मिनल अब, अख मिनल अब का क्या माना? बाप शरीक भाई यानी अल्लाती भाई, अख मिनल अब बाप शरीक भाई यानी अल्लाती भाई। इदा कानत लहू उख्तुम मिन उम्मिही, उख्त मिन उम्मिही का क्या माना? मां शरीक बहन, उख्त मिन उम्मिही जो मां शरीक बहन है यानी अखियाफी बहन है। तवज्जो है, अब तर्जमा सुने। वदालिका मिस्लुल अखी मिनल अबी, और ये जैसे कि एक अल्लाती भाई है। इदा कानत लहू उख्तुम मिन उम्मिही, जब उसकी कोई अखियाफी बहन हो। जाज अली अखी ही मिन अबी ही, तो इस आदमी के अल्लाती भाई के लिए जायज है। अय्यतज़व्वजहा, के वो इस अल्लाती भाई की अखियाफी बहन के साथ निकाह कर सकता है। आगे देखिए, वकुल्लु सबियैन इजतमा अला सदि इमरातिन वाहिदतिन लम यजुज लि अहदिहिमा अन यतज़व्वज बिल उखरा। वकुल्लु सबियैन, हर वो दो बच्चे, इजतमा जो दोनों जमा हो जाएं, अला सदि इमरातिन वाहिदा, सदियुन कहते हैं औरत की छाती भाई, तो कहते हैं जब वो दो बच्चे जो जमा हो जाएं, अला सदी इमरातिन वाहिदतिन, एक ही औरत की छाती पर, यानी एक ही औरत की छाती से दूध पिए, लम यजूस लि अहदिहिमा अन यतज़व्वजा बिल उखरा, तो इनमें से एक के लिए जायज नहीं है कि वो दूसरे के साथ निकाह करे। हादा हुवल असलु, यही ज़ाबता है, जो दो बच्चे भी एक औरत का दूध पी लें उनका आपस में निकाह जायज नहीं। हादा हुवल असलु, यही ज़ाबता है। लिअन्न उम्महुमा वाहिदतुन, इसलिए क्योंकि इन दोनों की मां एक है। फहुमा अखुन व उख्तुन, तो ये भाई और बहन हैं भाई। वला यतज़व्वजुल मुर्ज़ातु अहदम मिन वलदिल्लति रज़अत, याद रखो एक है इबन और एक है बिंत। इबन बेटे को कहते हैं और बिंत बेटी, और वलद का लफ्ज, वलद का लफ्ज बेटे और बेटी दोनों को शामिल है, और नीज ये मुफरत पर भी बोला जाता है, तस्निया पर भी और जमा पर भी, मुजक्कर पर भी मुअन्नस पर भी, तो सब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक बेटा या बेटी हो तब भी वलद कह सकते हैं आप, दो हो तो भी वलद कह सकते हैं, तीन या ज्यादा हो तो भी आप वलद कह सकते हैं। तो उर्दू में इसका बेहतरीन तर्जमा जो है वो औलाद है। वलद का क्या तर्जमा है? औलाद भाई। सूरत है मसाला ये, एक लड़की ने बचपन में एक औरत का दूध पिया तो ये औरत उसकी रिजाई मां बन गई, तो इस औरत की जो औलाद है उससे भी ये लड़की निकाह नहीं कर सकती, यानी इस औरत का कोई बेटा है क्योंकि वो इसका रिजाई भाई बन चुका है, तवज्जो है। और इस औरत की जो औलाद की औलाद है उनमें से भी किसी के साथ ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि वो इसके रिजाई भाई बहनों की औलाद हैं, वो इस लड़की के रिजाई भाई बहनों की औलाद हैं, यानी वो इसके रिजाई भांजे और भतीजे हैं भाई। तो ये माना है वला यतज़व्वजुल मुर्ज़ातु, और मुर्ज़ा निकाह नहीं कर सकती, मुर्ज़ा वो जिसने दूध पिया है भाई, तो मुर्ज़ा जो है वो निकाह नहीं कर सकती। अहादन, किसी एक से भी, मिन वलदिल्लति अर्ज़अत, उस औरत की औलाद में से जिसने इसको दूध पिलाया था। लिअन्नहु अखूहा, क्योंकि वो इसका भाई है। वला वलदी वलदीहा, और न उस औरत की औलाद की औलाद के साथ। लिअन्नहु वलदु अखीहा, क्योंकि वो इसके भाई की औलाद है, वो इसके भाई की औलाद यानी भतीजे हैं। इसी तरह भांजों का भी यही हुक्म है, तो रिजाई भांजे और रिजाई भतीजे से भी इस लड़की का निकाह जायज नहीं है भाई। वला यतज़व्वजु सबीयुल मुर्ज़ा उख्त ज़ौजिल मुर्ज़ियाति लिअन्नहा अम्मतुहु मिनर रज़ाअ। सूरत है मसला ये, एक बच्चे ने एक औरत का दूध पिया है तो ये औरत इसकी रिजाई मां बन गई, और इस औरत का खावंद इसका रिजाई बाप बन गया, तो ये जो बच्चा है ये अपने रिजाई बाप की बहन से भी निकाह नहीं कर सकता। किससे? रिजाई बाप की बहन, क्योंकि वो इसकी रिजाई फूफी बन गई भाई। जैसे नस्बी फूफी से निकाह हराम है, रिजाई फूफी से भी निकाह हराम है। तो कहते हैं वला यतज़व्वजु सबीयुल मुर्ज़ऊ, और वो बच्चा जिसने दूध पिया है वो निकाह नहीं कर सकता। उख्त ज़ौजिल मुर्ज़िअति, दूध पिलाने वाली के खावंद की बहन से। लिअन्नहा अम्मतुहु मिनर रज़ाई, इसलिए क्योंकि वो इसकी रिजाई फूफी है। व इज़ इख्तलतल लबनु बिल माई, अब सूरत मसला ये, एक तो था दूध औरत बराह रास्त बच्चे को पिलाए, और एक सूरत यह है कि औरत की छाती से दूध निकाला जाए और बच्चे को पिलाया जाए, तो क्या उससे भी हुरमत साबित होगी या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि हां, अगर दूध निकाल कर भी किसी बच्चे को पिला दिया तो वो औरत उसकी रिजाई मां बन जाएगी, हुरमत साबित हो जाएगी, और अगर उस दूध के साथ कुछ और चीज मिला दी तो फिर क्या फिर भी हुरमत साबित होगी या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि इस सूरत में मसलन दूध के साथ पानी मिलाया है, तो इस सूरत में अगर दूध पानी से ज्यादा है या दूध पानी के बराबर है फिर तो हुरमत साबित हो जाएगी। जब दूध पानी से ज्यादा है या पानी के बराबर है फिर तो हुरमत साबित हो जाएगी, लेकिन अगर पानी ज्यादा है दूध कम है फिर हुरमत साबित नहीं होगी। वजह यह कि जब पानी ज्यादा हो गया तो पानी हुआ गालिब और दूध क्या हुआ? मगलूब। और मगलूब को ऐसे ही शुमार किया जाता है जैसे वो है ही नहीं, जो गालिब चीज है उसको शुमार किया जाता है। तो लिहाजा यहां पर जब पानी गालिब आ गया तो गोया दूध है ही नहीं, पानी ही बच्चा पी रहा है, और उससे तो हुरमत साबित नहीं, लेकिन अगर दूध पानी के बराबर है या दूध गालिब है तो फिर इस सूरत में हुरमत साबित हो जाएगी क्योंकि गालिब का एतबार है। तो कहते हैं वह ईद अख्तल अतल लबन बिल माई, जब दूध पानी के साथ मिल गया, वल्लबन हुवल गालिब, इस हाल में कि दूध जो है वो गालिब है, ताल्लक बिही तहरीम, तो इससे भी तहरीम का ताल्लुक हो जाएगा, इसकी वजह से भी हुरमत आ जाएगी। और मैंने बताया अगर दूध पानी के बराबर हो फिर भी हुरमत आ जाएगी। हां, जब पानी गालिब हो जाएगा अब दूध का एतबार नहीं, जब तक पानी गालिब नहीं दूध का एतबार रहेगा। कहते हैं वह इन गलबल माऊ, और अगर पानी गालिब हुआ, लम य ताल्लक भी तहरीम, तो इसके साथ तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा, खिलाफ अल शाफी रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दूध को पानी के साथ मिलाकर बच्चे को पिलाया तो पानी गालिब ही क्यों ना हो फिर भी रजाअत साबित हो जाएगी, फिर भी रजाअत साबित हो जाएगी। भाई हुरमत तो साबित नहीं होगी, हुरमत के लिए तो कम से कम कितनी दफा पिलाना जरूरी है, पांच अलग अलग मजलिसों में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक पांच मर्तबा बच्चा एक औरत का दूध पिएगा तो फिर हुरमत साबित होगी, तवज्जो है। लेकिन अगर दूध के साथ पानी मिलाया और पानी गालिब है और यह बच्चे को पिलाया तो क्या इसको भी दूध पिलाना शुमार करेंगे या नहीं, यह भी उन पांच में से एक बनेगा या नहीं? पांच मरतबा दूध पिलाने से हुरमत साबित होती है तो यह भी पांच में से इसको एक शुमार करेंगे या नहीं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते इसको भी शुमार करेंगे, इसलिए क्योंकि अगरचे पानी गालिब है लेकिन दूध मौजूद तो है, हकीकतन दूध मौजूद है और बच्चे के पेट में जा रहा है, लिहाजा इसका एतबार करेंगे। जबकि हमारे नजदीक दूध अगर गालिब हो या पानी के बराबर हो फिर मोतबर है, मगलूब हो अगर दूध तो मगलूब का एतबार नहीं किया जाता, उसको कल आदम शुमार करते हैं। तो कहते हैं खिलाफ अली शाफी रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के, हुआ यकूल, वो फरमाते हैं, इन्नहु मौजूदुन फीही हकीकतन, कि वो जो दूध है वो इस पानी के अंदर हकीकतन मौजूद है तो लिहाजा उसका एतबार करेंगे। वनहनु नकूलु, और हम कहते हैं, अल मगलूबु गैरु मौजूदिन हुक्मन, के मगलूब जो होता है वो गैर मौजूद होता है हुक्मन, हुक्म के एतबार से, यानी मगलूब पर गैर मौजूद होने का हुक्म लगाया जाता है, गोया वो है ही नहीं। जब पानी गालिब है तो यूं समझो दूध है ही नहीं, बच्चा खालिस पानी ही पी रहा है भाई। तो हम वनहनु नकूलु, हम कहते हैं, अल मगलूबु गैर मौजूदिन हुक्मन, के मगलूब जो है वो हुक्मन गैर मौजूद है, हत्ता ला यज़हरु फी मुकाबलतिल गालिबी, यहां तक कि जो मगलूब होता है वो गालिब के मुकाबले में जाहिर नहीं होता, उसको शुमार नहीं करते, कमा फिल यमीनी, जैसे कि कसम के मसले में है, जैसे किस में है, कसम के मसले में है। याद रखो अगर एक शख्स कसम उठा लेता है कि वल्लाह मैं इस गाय का दूध नहीं पीऊंगा और फिर उस गाय के दूध में पानी मिलाकर इसको दिया गया और उसने उसको पी लिया तो क्या इससे हानिस होगा या हानिस नहीं? तो फुकहा फरमाते हैं अगर दूध गालिब हुआ तो फिर इसका एतबार है, लिहाजा यह शख्स हानिस हो जाएगा, और अगर पानी गालिब हुआ तो अब दूध का कोई एतबार नहीं, लिहाजा यह शख्स हानिस नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि हत्ता ला यज़हरु फी मुकाबलतिल गालिबी, यहां तक कि जो मगलूब होता है वो गालिब के मुकाबले में जाहिर ही नहीं होता, कमा फिल यमीनी, जैसे कि कसम के अंदर है। वह इन इख्तलता बिताआमी लम यतअल्लक बिहि तहरीम, व इन कान अल्लबन गालिबन इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। फुकहाए किराम पर अल्लाह ताला करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए भाई, एक एक मसला उन्होंने कुरान और हदीस से अखज़ करके हमारे सामने पेश कर दिया, ये नहीं कि ये मसाइल उनके सामने पेश आ रहे थे और वो एक एक को दर्ज कर रहे थे, नहीं, जो पेश आए वो तो उन्होंने लिखे, जिस सूरत का एहतमाल भी बनता था वो भी उन्होंने कुरान और हदीस से अखज़ करके दर्ज कर दी। तो अब सूरत जिक्र कर रहे हैं कि अगर औरत का दूध निकालकर खाने में मिला दिया और फिर वो खाना बच्चे को खिलाया तो क्या अब भी हुरमत साबित होगी या नहीं? तो याद रखो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस सूरत में हुरमत साबित नहीं होगी, इसलिए क्योंकि खाने के साथ जब दूध को मिलाया गया है तो इसमें असल खाने को शुमार करते हैं, किसको, खाने को असल शुमार किया जाता है, ये खाना इसको असल गजा शुमार किया जाता है कि असल में तो ये गजा है, इससे बच्चे को कुव्वत वगैरह मिल रही है, दूध को वैसे साथ मिला दिया है। तो लिहाजा इसलिए असल जो है खाना उसी का एतबार है, दूध उसका ताबिया बन गया और ताबिया का कोई एतबार नहीं है। तो कहते हैं वह इन इख्तलता भी तामी, और अगर यह दूध ताम के साथ मिल गया, लम या ताल्लक भी तहरीम, तो इसके साथ तहरीम का ताल्लुक वाक नहीं होगा। वह इनकान लबन गालिबन, अगरचे दूध गालिब ही क्यों ना हो, ताम कम है और दूध उस पर गालिब आ रहा है, फिर भी इससे हुरमत साबित नहीं होगी। वजह यह कि बेशक दूध गालिब भी है, बच्चे को अगर यह ताम खिलाया जाएगा इसको कोई भी इर्जा नहीं कहता, इसको कोई भी इर्जा नहीं कहता, इसको तो ताम खिलाना ही हर एक कहता है, इर्जा नहीं कहता, और हुरमत इर्जा की वजह से आती है, ताम खिलाने से हुरमत नहीं आती। तो कहते हैं वही इख्तलाता भी ताम लम यताल्लक भी तहरीम, और अगर दूध ताम के साथ मिल गया तो इससे तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा। व इनकान लबन गालिबन, अगरचे दूध गालिब ही हो, इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह इमाम साहिब के नजदीक, व काला और साहिबैन फरमाते हैं इदा कान लबन गालिबन, के जब दूध गालिब हो, यताल्लक भी तहरीम, तो इससे तहरीम का ताल्लुक होगा। साहिबैन फरमाते हैं अगर ताम पर दूध गालिब है और यह ताम बच्चे को खिलाया गया है तो हुरमत साबित हो जाएगी, क्योंकि दूध गालिब है और गालिब का एतबार किया जाता है। आगे देखिए, काला रजी अल्लाह ताला अन्हु कौलुहुमा फीमा इदा लम तमस्सहुन नार, ये जो काला रजी अल्लाह ताला अन्हु आया इससे साहिब हिदाया मुराद हैं। ये साहिब हिदाया अपना कौल जिक्र फरमाते हैं काला के साथ। तो कदीम जमाने में ये किताबें हाथ से लिखी जाती थी, असातिजा दर्स देते थे और उसमें तलबा लिखते थे वो किताबें, भाई तवज्जो है। तो ये साहिब हिदाया के शागिर्द, साहिब हिदाया की जब बात आती तो काला के साथ उनके लिए दुआ भी साथ लिख देते थे, भाई बात समझ में आ गए तो ये शागिर्द साथ मिलाते थे। तो काला रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहिब हिदाया फरमाते हैं कौलुहुमा फीमा इदा लम तमस्सहुन नारु, के साहिबैन का कौल उस सूरत में है इदा लम तमस्सहु, जब इस दूध को न छुआ हो, अन नारु आग ने। सूरत क्या चल रही है, ताम है और उस ताम में दूध मिला दिया। साहिबैन फरमाते हैं अगर यह दूध गालिब हुआ तो फिर हुरमत साबित हो जाएगी। तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि साहिबैन का यह कौल उस सूरत में है जब इसको आग पर न पकाया गया हो। अगर खाने में दूध को मिलाया और दूध गालिब है और फिर इसको आग पर भी कुछ पका लिया गया तो अब साहिबैन भी फरमाते हैं कि इससे हुरमत साबित नहीं होगी। वजह यह कि आग पर पकाने की वजह से उसकी हालत बदल गई है, उस दूध की हालत बदल गई है। तो साहिब हिदाया आपको यह बतला रहे हैं कि ये जो साहिबैन ने कहा कि दूध जब गालिब हो तो उसका एतबार किया जाएगा, यह वो सूरत है जब इसको अभी आग पर पकाया न गया हो। भाई तो कहते हैं काला रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहिब हिदाया फरमाते हैं कौलुहु माफी मा, के साहिबैन का कौल उस सूरत में है इदा लम तमस्सहुन नारु, जब इस दूध को आग ने न छुआ हो, हता लौतु बिहा बिहा, यहां तक कि अगर दूध को आग पर पका लिया गया, ला यताअल्लक बिही तहरीम, तो फिर इसके साथ तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा। फी कौलिहिम जमीआ, इन सब के कौल में। इमाम साहब तो फरमाते हैं दूध गालिब ही क्यों ना हो फिर भी उसका एतबार नहीं है। साहिबैन फरमाते थे कि दूध गालिब हो तो उसका एतबार है, लेकिन आग पर पकाने की सूरत में तो वो भी कहते हैं इसका एतबार नहीं। तो जब आग पर पका हो तो फिर सब के कौल के मुताबिक इसके साथ हुरमत का ताल्लुक नहीं होगा। तो कहते हैं हत्ता लौ तु बिहा बिहा, यहां तक कि दूध को अगर आग पर पका लिया गया, बिहा हा जमीर अन्नार को राजे है, तू बिहा बिहा आई बिन नारी, और नार मुअन्नस सिमाई है इसलिए उसकी तरफ मुअन्नस की जमीर राजे की। साहिब हिदाया ने हत्ता लौ तु बिहा बिहा, यहां तक कि दूध को अगर आग पर पका लिया गया, ला यताअल्लक बिही तहरीम फी कौलिहिम जमीआ, तो इसके साथ तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा इन सब के कौल में, यानी हमारे तीनों अइमा के कौल के मुताबिक। लहुमा, अब साहिबैन की दलील आ गई। लहुमा, साहिबैन फरमाते हैं कि अन्नल इबरत लिल गालिबी, के एतबार जो है वो गालिब का होता है, कमा फिल माई, जैसे के पानी में है, पानी भी जब उसमें दूध गालिब होता था तो उसका एतबार होता था, तो ताम में भी जब दूध गालिब होगा तो उसका एतबार होगा। तो साहिबैन फरमाते हैं अन्नल इबरत लिल गालिबी के एतबार जो है वो गालिब का है, कमा फिल माई जैसे कि पानी में है, इदा लम युगैर हु शैउन अन हालिही जब उस दूध को किसी और चीज ने उसकी हालत से बदला ना हो, यानी आग वगैरह ने जब दूध को न बदला हो तो फिर गालिब का एतबार किया जाएगा और हुरमत आ जाएगी। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न ताम असलुन के ताम असल है। इमाम साहब फरमाते हैं जब ताम के अंदर दूध मिलाया है तो ताम तगजी के अंदर असल है, यानी गजा देने में असल ताम है और दूध उसके ताबे बन गया, और असल का एतबार होता है, ताबे का एतबार नहीं होता। और याद रखो आपको बतलाएंगे कि यहां पर दारोमदार तगजी पर है, किस पर है? तगजी यानी वो चीज जिससे बच्चे को गजा मिलती है, और जब बच्चे को ताम खिलाया जा रहा है मालूम हुआ ये जो ताम है ये है असल, इसके जरिए तगजी हो रही है, इसके जरिए बच्चे को गजा मिल रही है। तो एतबार किसका? तगजी का एतबार है, और इसमें दूध को ताम के साथ मिलाया तो तगजी में असल क्या है? यहां ताम है तो ताम का एतबार होगा, दूध का एतबार नहीं। तो हुक्म का दारोमदार किस पर है? तगजी पर। किस पर? यानी जिससे बच्चे को गजा मिल रही है। तो ताम के साथ दूध मिलाया तो तगजी में इन दोनों में से असल क्या है? ताम असल है और दूध उसके ताबिया है भाई। तो वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न ताम असल, उनके ताम जो है वो असल है, वल्लबन ताबिउन लहू फी हक्किल मकसूदी और दूध उसका ताबे है फी हक्किल मकसूदी मकसूद के हक में। मकसूद क्या था इसके जरिए? तगजी। तो इस तगजी के अंदर असल ताम को शुमार किया जाता है, वो जो इसके साथ माया या बहने वाली चीज मिलाई जाए उसको असल शुमार नहीं किया जाता। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन्न ताम असल, उनके ताम जो है वो असल है, वल्लबन ताबिउन लहू और दूध उसका ताबिअ है फी हक़िल मकसूदी मकसूद यानी तगजी के हक में, फसारकल मगलूब तो दूध भी मगलूब की तरह ही हो गया, अगरचे दूध गालिब है लेकिन वो ताम के ताबिअ बन गया तो वो किसके दर्जे में हुआ? मगलूब के दर्जे में। किसके? है तो गालिब लेकिन किसके दर्जे में हो गया? मगलूब के दर्जे में हो गया। तो कहते हैं फसारकल मगलूबी तो ये दूध भी मगलूब की तरह हो गया, और आप जानते हैं मगलूब का एतबार नहीं, उसको शुमार नहीं किया जाता। वला मुअतबर बितकातुरिल लबनी मिन अत्ताम इंदहू हुवा सहीह। सूरत मसला ये तवज्जो है, बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि इमाम साहब के नजदीक जब ताम में दूध शामिल किया जाए तो अगर ये दूध इतना है कि उस ताम से टपक रहा है तो फिर इस सूरत के अंदर हुरमत आएगी भाई। ये बास फुकहा फरमा रहे हैं कि इमाम साहब के नजदीक अगर उस ताम से दूध टपक रहा है तो फिर इस सूरत में हुरमत आएगी, क्योंकि दूध टपक रहा है तो एक कतरा भी दूध बच्चे के पेट में पहुंचेगा तो हुरमत आ जाएगी। लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि नहीं, सही कौल यही है कि दूध चाहे टपक ही क्यों ना रहा हो फिर भी असल ताम है। किस चीज में? तगजी में। असल ताम ही है, दूध उसके ताबे है, जब दूध ताबे है तो मगलूब की तरह हुआ और मगलूब का तो कोई एतबार नहीं किया जाता, तो दूध चाहे टपक ही क्यों ना रहा हो सही कौल के मुताबिक उससे हुरमत फिर भी नहीं आएगी। तो कहते हैं वला मुअतबर बितकातुरिल लबनी मिन अत्ताम, तकातुर का माना है कतरे टपकना, वला मुअतबर बितकातुरिल लबनी और कोई एतबार नहीं है दूध के कतरों के टपकने का, मिन अत्ताम ताम से, इंदहु इमाम साहिब के नजदीक, हुआ सहीह यही कौल सहीह है, लिअन्न तगज़िया बितआमी इसलिए क्योंकि तगज़ी जो है वो ताम के जरिए होती है, गजा किससे हासिल की जाती है? ताम के जरिए हासिल की जाती है, इद हुवल असलू क्योंकि तगजी ही असल है, हुआ जमीर किसको लौटाएं? तगजी, तगजी ही असल है, मैंने आपको बताया हुक्म का दारोमदार तगजी पर है जिससे बच्चा गजा हासिल करता है, और जब ताम मौजूद है तो बच्चा ताम से गजा हासिल करता है, दूध उसके ताबे हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्न तगद्दिय बित्तआमी, इसलिए क्योंकि गजा हासिल करना ताम के जरिए होता है। इद हुवल असलु, इसलिए क्योंकि तगजी ही असल है, यानी उसी पर तहरीम का दारोमदार है। आगे देखिए व इन इख्तलत बिद्दवा वल्लबनु गालिबुन तअल्लक बिही तहरीम। दूसरी सूरत, दूध के साथ दवा कोई मिला दी और ये बच्चे को खिलाई। पहली सूरत क्या थी, दूध के साथ पानी मिलाएं तो क्या हुक्म है, बतला दिया। फिर दूध को ताम के साथ मिलाएं तो क्या हुक्म है, वो भी बयान कर दिया। अब अगर दूध के साथ दवा मिलाई है और ये बच्चे को खिला रहे हैं, तो कहते हैं इस सूरत में अगर दूध गालिब हुआ तो फिर इससे भी हुरमत आ जाएगी। अगर दूध गालिब हुआ फिर भी हुरमत आ जाएगी। वजह यह कि जब दूध गालिब है और उसमें दवा मिलाकर बच्चे को दी जा रही है, मालूम हुआ असल मकसूद यह है कि यह दवा की वजह से दूध बच्चे को हजम हो जाए। क्या मकसूद है कि इस दवा की वजह से यह दूध बच्चे को हजम हो जाए, तो यहां असल में दूध ही का पहुंचाना मकसूद है, दवा को सिर्फ उसमें तकवियत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए शामिल किया गया है। असल मकसूद दवा नहीं है बल्कि दूध है, क्योंकि दूध गालिब है यहां पर, तवज्जो है। लेकिन अगर दवा गालिब हुई, दूध मगलूब है, फिर मालूम हुआ वहां दूध पहुंचाना मकसूद नहीं है बल्कि दवा पहुंचाना मकसूद है। फर्क समझ में आ गया। तो कहते हैं वह इन इख्तलता बिद्दवाई, और अगर दूध दवा के साथ मिल गया, वल्ला बनु गालिबुन, और हाल यह है कि दूध गालिब है, ताल्लक बिही तहरीम, तो इससे भी तहरीम का ताल्लुक हो जाएगा। लिअन्ना लबन यबका मकसूदन फीही, इसलिए क्योंकि दूध जो है वह इसमें मकसूद होकर बाकी रहेगा। गालिब दूध है तो वही मकसूद रहेगा। इसी दवा उली तकवियती ही, इसलिए क्योंकि यह जो दवा है वह इस दूध को कुव्वत देने के लिए है। अलल वसूली, पहुंचने में, के इस दूध के मैदे में पहुंचने में और हजम होने में दवा तकवियत दे रही है कि अच्छी तरह हजम हो जाए। तो कहते हैं ईदी दवा उली तकवियत ही अलल वसूली, इसलिए क्योंकि ये जो दवा है ये उस दूध को कुव्वत देने के लिए है। अलल वसूली, उस दूध के पहुंचने में। वह ईद अख्तला तल्ला बनु बिला बनी शादी, दूसरी सूरत, औरत के दूध के साथ बकरी का कुछ दूध मिला दिया, तो क्या अब हुरमत साबित होगी या नहीं। तो कहते हैं जाब्ता हम आपको बतला चुके, अगर औरत का दूध गालिब हुआ तो हुरमत आ जाएगी, या औरत का दूध बकरी के दूध के बराबर हुआ तब भी हुरमत आ जाएगी। लेकिन अगर बकरी का दूध गालिब हुआ तो फिर औरत के दूध का कोई एतबार नहीं, फिर हुरमत नहीं आएगी। तो कहते हैं वह इद अख्तलत लबन बिला बनी शाती, और जब वो दूध मिल गया बिला बनी शाती, भेड़ बकरी के दूध के साथ। शात का लफ्ज मैंने बतलाया है भाई, भेड़ बकरी दोनों जिंसों को शामिल है भाई। तो कहते हैं वह इद अख्तलत लबन बिला बनी शाती, और अगर वो दूध मिल गया भेड़ बकरी के दूध के साथ, वह हुवल गालिबु, इस हाल में कि ये जो औरत का दूध है ये गालिब है, ताल्लक बिही तहरीम, तो इसे तहरीम का ताल्लुक होगा। वह इन गलब लबनु शाती, और अगर भेड़ बकरी का दूध गालिब है, लम यताल्लक बिही तहरीम, तो इससे तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा। एतबारन लिल गालिबी कमा फिल माई, गालिब का एतबार करते हुए जैसे कि पानी में था, जैसे पानी के मसले में था। व इद अख्तलत लबन उम्रअतैन ताअल्लक़त तहरीमु बिअग़लबिहिमा, सूरत है मसला ये, एक बच्चे को दो औरतों का दूध मिलाकर पिलाया, तो क्या इस सूरत में दोनों से तहरीम साबित होगी या एक से। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में जो दूध गालिब है उसका एतबार किया जाएगा, उस औरत से हुरमत साबित हो जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में गालिब और मगलूब को नहीं देखा जाएगा बल्कि दोनों से हुरमत साबित होगी। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों से तहरीम का ताल्लुक होगा। देखिए भाई साहिब हिदायत तफसील बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वही दख्तलत लबन उम्रअतैन, और जब दो औरतों का दूध मिल गया, ताल्लकत तहरीम बिअग़लबिहिमा इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, तो तहरीम का ताल्लुक इन दो में से जो गालिब है उसके साथ होगा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक। लिअन्ना अल-कुल्ल सारा शैअन वाहिदा, इसलिए क्योंकि यह सारा दूध एक ही चीज बन गया, सारा दूध एक ही चीज बन गया। फयुज अलुल अकल लुताबियान लिल अक्सरी, लिहाजा जो अकल है, जो कम मकदार वाला है, उसको ताबे कर दिया जाएगा लिल अक्सरी, उसके जो ज्यादा है, फी बिना इल हुक्म अलैहि, उस पर हुक्म की बुनियाद रखने के लिए। यह हुरमत की बुनियाद हम रखना चाहते हैं इस दूध पर भाई, तो जो अकल होगा वो अक्सर के ताबे हो जाएगा, तो जो अक्सर है, जो गालिब है, वहां तहरीम आ जाएगी, और जो अकल है वहां तहरीम नहीं आएगी। तो कहते हैं लि अन अल कुल सारा शय वाहिदा, इसलिए क्योंकि ये सारा दूध एक ही चीज बन गया। फयुज अलुल अकल लुताबे अन लिल अक्सरी, तो अकल जो है उसको अक्सर के ताबे करार दिया जाएगा। फी बिना इल हुक्म अलैहि, उस पर इस हुरमत के हुक्म की बुनियाद रखने के लिए। वकाल मुहम्मद व जुफर रहिमहुम अल्लाह ताला, इमाम मुहम्मद और इमाम जुफर रहिमहुम अल्लाह फरमाते हैं, यतअल्लकु तहरीम बिही मा, के दोनों के साथ तहरीम का ताल्लुक होगा। यहां गालिब मगलूब को नहीं देखा जाएगा, लिहाजा दोनों औरतों से हुरमत आ जाएगी, वो दोनों औरतें इस बच्चे की रिजाई माएं बन जाएंगी भाई। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद व जुफर रहिमहुमल्लाह यतअल्लकु तहरीम बिहिमा, तो इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों के साथ तहरीम का ताल्लुक होगा। लिअन्नल जिन्स ला यगलिबुल जिन्सा, इसलिए क्योंकि एक जिन्स उसी जिन्स पर गालिब नहीं होती। एक भी औरत का दूध है और दूसरा भी औरत का दूध है, तो दोनों एक ही जिन्स में से हैं। पानी दूध के साथ मिलाया था, पानी की अलग जिन्स है, दूध की अलग जिन्स है, तो जो गालिब होता था हम उसका एतबार करते थे, और जो मगलूब था गोया वो मौजूद ही नहीं। लेकिन यहां पर दोनों जो हैं ये औरत के दूध हैं, तो लिहाजा एक जिन्स अपनी ही जिन्स में मिली है, अपनी ही जिन्स में मिली है, और कोई चीज जब अपनी जिन्स में मिले तो वो खत्म नहीं होती बल्कि वो बढ़ जाती है। दूसरी जिन्स के साथ कोई चीज मिले और दूसरी जिन्स गालिब हो तो फिर वो चीज क्या होती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अपनी ही जिन्स में मिले तो कम नहीं होती बल्कि ज्यादा हो जाती है, इसलिए दोनों का एतबार होगा। तो कहते हैं लि अन्नल जिन्स ला यगलिबुल जिन्स, इसलिए क्योंकि जिन्स जो है वो अपनी ही जिन्स पर गालिब नहीं होती। फइन नशय अला यसीरु मुस्तहलकन फी जिन्स ही, इसलिए क्योंकि कोई चीज हलाक नहीं होती अपनी ही जिन्स में, कोई चीज अपनी ही जिन्स में हलाक नहीं होती बल्कि ज्यादा हो जाती है। लितिहादिल मकसूदी, बवजह मकसूद के मुत्तहिद होने के, क्योंकि दोनों का मकसूद एक ही है, दोनों का मकसूद और मनाफिया एक ही है। एक औरत का दूध उससे भी तगजी होगी, दूसरी औरत का दूध उससे भी क्या होगी, तगजी, तो दोनों का मकसूद एक ही हुआ, तो लिहाजा यहां पर दोनों का एतबार करेंगे भाई। यह माना है लितिहाद इल मकसूदी, बवजह मकसूद के एक होने के। वान अबी हनीफा रहिमहुल्लाह फी हादा रिवायतानी, और इमाम साहिब से इस बारे में दो रिवायतें हैं। व असलुल मसअलति फिल अयमानी, और असल मसला किताबुल अयमान में है भाई। याद रखो इमाम साहिब से इस बारे में दो रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह गालिब का एतबार करते हैं, मगलूब का एतबार नहीं करते, तो सिर्फ गालिब के अंदर हुरमत आएगी। जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर फरमाते हैं कि दोनों से हुरमत आ जाएगी। तो इमाम साहिब से इस बारे में दो रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं, और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं भाई। तो ये माना है वान अबी हनीफा रहमतुल्लाह फी हादा रिवायतानी, इमाम साहिब से इस बारे में दो रिवायतें हैं। व असलुल मसअलति फिल अयमानी, और असल मसला जो है वो किताबुल अयमान में है। अयमान जमा है यमीन की, कसम को कहते हैं कसम। किताबुल अयमान के अंदर कहते हैं ये असल मसला जिक्र है, वहां जिक्र है किताबुल अयमान के अंदर। मसलन एक शख्स कसम उठा लेता है कि वल्लाह मैं इस गाय का दूध नहीं पीऊंगा, तो इस गाय के दूध को एक दूसरी गाय के दूध के साथ मिलाकर इस आदमी को दिया गया और उस आदमी ने इसको पी लिया। तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं गालिब का एतबार है। अगर वो गाय जिसके दूध के न पीने की इसने कसम उठाई थी, अगर उसका दूध इस गाय के दूध पर गालिब है या इसके बराबर है, तो फिर तो ये शख्स हानिस हो जाएगा, वरना हानिस नहीं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों तरफ गाय का दूध है, और इसमें अगर वो गाय जिसका दूध न पीने की इसने कसम खाई थी, अगर उसका दूध मगलूब ही क्यों ना हुआ, फिर भी यह हानिस हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज अपनी ही जिन्स में मिलकर हलाक नहीं होती भाई। بات سمجھ میں آگے لہذا جو چاہے مغلوب ہے لیکن اس کو شمار کریں گے اور یہ شخص حانس ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہ اصل المسئلۃ فی الایمان, اور یہ اصل مسئلہ کتاب الایمان میں ہے, یعنی وہاں پر یہ صاحبین کا آپس میں اختلاف ذکر ہے بھائی. آگے دیکھیے وہ ایدا نزل للبکری لبن فارضعت صبیا تعلق به التحریم. صورت مسئلہ یہ, ایک باکرہ لڑکی ہے, اس کی چھاتی میں دودھ اتر آیا اور اس نے وہ کسی بچے کو پلا دیا, تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور یہ اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی. تو کہتے ہیں وہ ایدا نزل للبکری لبن, اور جب کسی باکرہ کے دودھ اتر آیا, فارضعت صبیا, تو اس نے کسی بچے کو وہ دودھ پلایا, تعلق به تحریم, تو اس سے بھی تحریم کا تعلق ہوگا, لاطلاق النص, نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے. نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. یہ نص مطلق ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں کہ وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو بھی دودھ پلائے وہ اس کی ماں بن گئی اور اس پر حرام ہو گئی. تو کہتے ہیں لی اطلاق النص, نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے, ولی انہ سبب النشوء, اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ نشو نما کا سبب ہے, فیثبت به شبہۃ البعضیہ, تو اس سے بھی جزئیت کا شبہ ثابت ہو جائے گا. یہ باکرہ نے دودھ پلایا ہے, باکرہ نے بچے کو دودھ پلایا ہے, تو یہاں حرمت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ دودھ بچے کا جز بن گیا, اور یہ دودھ تو کس کا جز تھا؟ عورت کا, تو یہ بچہ اس کا جز بن گیا. تو یہاں پر بھی باکرہ نے بھی جب دودھ پلایا ہے تو اس دودھ سے بچے کی نشو نما ہوئی, یہ بچہ کیا بن گیا؟ باکرہ کا جز بن گیا, لہذا حرمت آئے گی بھائی. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ولی انہ سبب النشوء, اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ نشو نما کا سبب ہے, فیثبت به شبہۃ البعضیہ, تو یہ جو باکرہ نے دودھ پلایا ہے اس کے ذریعے بھی جزئیت کا شبہ ثابت ہو جائے گا اور حرمت آ جائے گی. وَإِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوجِرَ الصَّبِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمِ. صورت مسئلہ یہ, ایک عورت کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا اور بچے کو پلایا گیا, تو کیا اسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں حرمت ثابت ہو جائے گی, حرمت ثابت ہو جائے گی, کیونکہ یہ حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے؟ شبہ جزئیت آ جاتا ہے, وہ دودھ کیا ہے؟ بچے کے اندر گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے, تو وہ دودھ جو ہے بچے کا جوس بن گیا اور بچہ اس عورت کا جوس بن گیا. تو کہتے ہیں وہ ایدا حلیبا لبن المرآتی, اور جب دودھ نکالا گیا کسی عورت کا, بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد, فاوجر الصبی, اوجر یوجر ایجار کا معنی ہے بیمار کے منہ میں دوا ڈالنا. بیمار کے منہ میں دوا ڈالنے کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اوجر یوجر. تو یہاں پر بھی ہے کہ دودھ نکالا گیا, فاوجر الصبی, تو بچے کے منہ میں وہ دودھ ٹپکایا گیا, تعلق به تحریم, تو اس سے بھی تحریم کا تعلق ہو جائے گا, خلافا للشافعی رحمہ اللہ, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. وہ فرماتے ہیں نہیں, یہ جو مردہ عورت کا دودھ نکالا گیا ہے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. ان کی دلیل سنیں بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثبوت حرمت کے اندر اصل میں وہ عورت ہے. دیکھو جب بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت بھی بچے پر حرام, اور اس عورت کے اصول و فروع بھی بچے پر حرام, لیکن یہ حرمت کے اندر اصل یہ عورت ہے. اصل کیا ہے؟ یہ عورت. اولاً یہ حرمت عورت میں آئی, اور پھر عورت کے واسطے سے اس کے اور رشتہ دار بھی بچے پر حرام ہو گئے. تو اصل میں حرمت کس میں آئی؟ عورت میں آئی. یہ عورت بچے کی رضائی ماں بنی, اور پھر اس عورت کے واسطے سے باقی عورت کے رشتہ دار بھی بچے پر حرام ہو گئے. توجہ ہے؟ جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ثبوت حرمت اصل کس میں ہوتا ہے؟ عورت میں. اور پھر باقی رشتہ دار جو عورت کے بچے پر حرام ہو جاتے ہیں وہ اس عورت کے واسطے سے حرام ہوتے ہیں. یہ دودھ نہ پلاتی تو وہ باقی بھی اس بچے پر حرام نہ ہوتے. تو معلوم ہوا حرمت کے اندر اصل کون ہے؟ یہ عورت ہے. توجہ ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت کے اندر اصل عورت ہے بھائی, اور یہاں پر عورت مر چکی ہے, اس مردہ عورت کا دودھ نکال کر بچے کو پلایا گیا ہے, तो यहां हुरमत नहीं आएगी क्योंकि वो औरत अब हुरमत का महल ही नहीं रही, वो तो मर चुकी है भाई, यहां हुरमत का कोई फायदा ही नहीं है, औरत तो मर चुकी है, तो जो असल है वहां हुरमत नहीं आई, तो बाकी रिश्तेदारों में भी कोई हुरमत नहीं आई। दलील उनकी समझ में आ रही है, वो फरमाते हैं ये हुरमत के अंदर असल क्या है, वो दूध पिलाने वाली औरत है, लेकिन यहां पर इस औरत के अंदर भी हुरमत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो औरत अब हुरमत का महल ही नहीं रही, वो तो मर चुकी है भाई, वो तो मर चुकी है, उसको हराम करार देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब वो हुरमत का महल नहीं, तो अब बाकियों में भी हुरमत नहीं आएगी। हमने कहा था मुर्दा औरत का दूध भी बच्चे को पिलाएंगे तो हुरमत आ जाएगी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फिर हुरमत नहीं आएगी। तो कहते हैं खिलाफ अली शाफी रहमतुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के हुआ या कूलू, वो फरमाते हैं अल असलु फी सुबूत अल हुरमति इन्नमा हुवल मरअतु, कि असल जो है हुरमत के साबित होने में वो औरत ही है, सुम्मा ततअद्दा इला गैरिहा, फिर ये हुरमत मुतअद्दी होती है इला गैरिहा, इस औरत के अलावा की तरफ भी, बिवासितातिहा, इसी औरत के वास्ते से, यह हुरमत में असल औरत है, फिर इस औरत के वास्ते से यह हुरमत मुतअद्दी होती है औरों की तरफ भी, वबिल मौत लम तबका महल लहा, और मौत की वजह से यह औरत जो है हुरमत का महल होकर बाकी न रही, अब यह हुरमत का महल ही नहीं, अब यहां हुरमत साबित करने का कोई फायदा ही नहीं, ये तो मर चुकी है। तो कहते हैं वबिल मौत लम तबका महल लहू, और मौत की वजह से यह औरत जो है हुरमत का महल न रही, वलिहादा ला यूजिब वत उहा हुरमत अल मुसाहरती, और इसी वजह से इस मुर्दा औरत से अगर कोई सोहबत कर ले तो उसे हुरमत मुसाहरत साबित नहीं होगी। भाई आप हुरमत मुसाहरत का मसला भी पढ़ चुके हैं, मुसाहरत का माना है ससुराली रिश्ता, और हुरमत का माना हुरमत के कर लें या एहतराम के कर लें, भाई हुरमत मुसाहरत ससुराली रिश्तों की हुरमत, ससुराली रिश्तों का हराम होना, यह यूं कह लें ससुराली रिश्तों का एहतराम। भाई आपने पढ़ा है कि किसी शख्स पर उसकी बीवी के उसूल और फुरू हराम होते हैं, अपनी बीवी के उसूल और फुरू हराम होते हैं क्योंकि उन सब से इसका ससुराली रिश्ता आ गया। और आपने मसला पढ़ा था कि ये हुरमत मुसाहरत ये बड़ा नाजुक मसला है इंदल अहनाफ, कि हुरमत मुसाहरत ये है कि कोई शख्स अगर किसी औरत से जीना कर ले तो भी इस औरत के उसूल और फुरू इस आदमी पर हराम हो गए। वजह यह कि इस शख्स ने जब इस औरत से जीना किया और वती की, तो इस औरत की मां जो है वो इस आदमी के लिए सास के दर्जे में हो गई, और इस औरत की जो औलाद है वो इस आदमी के लिए सोतेली औलाद के दर्जे में हो गई, तो लिहाजा ये इन सब से रिश्ता हराम हो गया। जब भी कोई शख्स किसी औरत से जिना करता है तो वहां क्या आ जाती है, हुरमत मुसाहरत, यानी उस औरत के यानी उस मजनिया के उसूल और फुरो इस जानी पर हराम हो जाते हैं। बल्कि मैंने आपको बतलाया था कि सिर्फ जिना ही नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स बगैर हाइल के किसी औरत को छू ले, यानी औरत के हाथ पर आदमी ने हाथ रख दिया दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह नहीं, और उस आदमी को शहवत आ गई, तो अब इस औरत के उसूल और फुरो इस आदमी पर हराम हो गए। तवज्जो है, तो ये इंदल अहनाफ बड़ा ही नाजुक मसला है हुरमत मुसाहरत का। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए अहनाफ, आपके नजदीक तो हुरमत मुसाहरत साबित होती है, आपके नजदीक कोई शख्स किसी औरत से जिना कर ले तो उस औरत के उसूल और फुरो इस आदमी पर हराम हो जाते हैं, लेकिन अगर यह औरत जो मर गई है इस मुर्दा औरत के साथ अगर कोई सोहबत कर लेगा तो आपके नजदीक हुरमत मुसाहरत नहीं आती, आपके नजदीक हुरमत मुसाहरत नहीं आती। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह दूध पिलाने के इस मसले को कियास करते हैं हुरमत मुसाहरत के मसले पर, वो फरमाते हैं कि मुर्दा औरत का दूध निकालकर बच्चे को पिलाया जाए तो इससे हुरमत साबित नहीं होगी, इसी तरह जैसे उस मुर्दा औरत से कोई वती कर ले तो वहां हुरमत साबित नहीं होती, वहां हुरमत मुसाहरत साबित نہیں ہوتی، لہذا اس عورت کا دودھ پلایا گیا بچے کو تو اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی، یہ معنی ہے. کہتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے لا یوجب وطؤها، لا یوجب ای لا یثبت، لا یثبت وطؤها، اس عورت کی جو ساتھ صحبت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں کرتا حرمت المساہرت، حرمت مساہرت کو. ولنا، اب ہماری دلیل آ گئی، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان السبب هو شبهۃ الجزئیت، کہ یہ جو حرمت کا سبب ہے وہ شبہ جزئیت ہے، کہ بچہ جب اس دودھ کو پیے گا تو اس دودھ سے بچے کے گوشت اور ہڈیاں بنیں گی، تو وہ دودھ بچے کا جوس بن گیا، اور یہ دودھ تو کس کا جوس تھا؟ عورت کا، تو عورت کا جوس بچے کا جوس بن گیا، معلوم ہوا بچہ عورت کا جوس بن گیا. تو بے شک آپ مردہ عورت کا دودھ بھی نکال لیں، پھر بھی جزئیت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ دودھ بچے کا جوس بنے گا، تو بچہ کیا بن جائے گا؟ اس عورت کا جوس بنے گا، لہذا حرمت آئے گی بھائی، حرمت آئے گی ہمارے نزدیک. تو ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان سبب ہوا شبہت الجزئیت، کہ اس حرمت کا سبب جو ہے وہ شبہ جزئیت ہے. وذالک فی اللبن لمعنی الانشاء والانبات، اور یہ جو سبب ہے یہ دودھ کے اندر موجود ہے. لمعنی الانشاء والانبات، انشاء کا معنی نشو نما، افزائش بھائی، اور انبات کا معنی بھی اگانا یعنی نشو نما ہے، تو انشاء انبات کا ایک ہی معنی ہے. وَذَلِكَ فِي اللَّبَنِ، اور یہ سبب جو ہے یعنی شبہ جزئیت دودھ میں ہے. لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ وَالْإِنْبَاطِ، معنی کا ترجمہ کر لیں علت اور سبب کے. وَذَلِكَ فِي اللَّبَنِ، اور یہ سبب دودھ میں موجود ہے. لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ وَالْإِنْبَاطِ، نشو نما کی علت کی وجہ سے، نشو نما کی علت جو ہے، نشو نما جو ہے دودھ ابھی بھی نشو نما کرنے والا ہے، چاہے مردہ عورت کا دودھ نکالا ہے، لیکن اس میں نشو نما والی علت موجود ہے. اور یہ جو رضاعت سے حرمت آتی ہے وہ بھی کس وجہ سے آتی ہے؟ شبہ جزئیت ہی کی وجہ سے تو آتی ہے. تو جب یہ دودھ نشو نما کرے گا تو یہ بچہ عورت کا جز بن جائے گا، لہذا حرمت آ جائے گی. تو کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ وَالْإِنْبَاطِ، اور یہ سبب جو ہے دودھ کے اندر نشو نما کی علت کی وجہ سے ہے. وَهُوَ قَائِمٌ بِاللَّبَنِ، اور یہ نشو نما، یہ والا جو سبب ہے، قَائِمٌ بِاللَّبَنِ، وہ اس دودھ میں بھی موجود ہے. یہ جو مردہ عورت کا دودھ ہے اس میں بھی یہ نشو نما والا معنی اور سبب موجود ہے بھائی. وَهَذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ، جی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس حرمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عورت محل حرمت نہ رہی اور نیز اس حرمت کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اب اس کو بیان کریں کہ نہیں، اس حرمت کا فائدہ ہے. مثلا یہ حرمت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عورت، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، تو یہاں پر کوئی اور عورت بھی نہیں ہے جو اس مردہ عورت کو غسل دے، اور اس عورت کے کوئی محرم مرد بھی نہیں ہے جو اس کو پھر لے جا کر دفن کریں. توجہ ہے، یہ عورت مر چکی ہے، کوئی یہاں اور عورت بھی نہیں ہے اور کوئی اس عورت کا محرم مرد بھی نہیں ہے، لیکن اس عورت کا دودھ ایک صغیرہ کو پلایا گیا 2 سال کی مدت کے اندر اندر، اور اس صغیرہ کا اس کے ولی نے نکاح کروا دیا تھا ایک آدمی سے، اور وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو اس عورت کا دودھ نکال کر اگر اس صغیرہ کو پلا دیا گیا تو یہ صغیرہ اس عورت کی رضاعی بیٹی بن جائے گی، اور اس صغیرہ کا خاوند اس مردہ عورت کا داماد بن جائے گا، اور یہ مردہ عورت اس کی ساس بن جائے گی، اور ساس داماد کے لیے محرم ہے بھائی. تو لہذا اب یہ مرد جو ہے، یہ جو صغیرہ کا خاوند ہے، وہ اس مردہ عورت کا محرم بن گیا. اب وہ اس کو دفنا سکتا ہے، اور نیز وہ اس کو غسل تو نہیں کروا سکتا، کیونکہ کوئی عورت ہوتی تو وہ غسل کرواتی، یہ تو مرد ہے تو یہ غسل تو نہیں کروا سکتا، ہاں تیمم کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ محرم ہے، کم از کم تیمم تو کروا سکتا ہے. تو دیکھو اس حرمت کا بھی فائدہ ہوا، اس صغیرہ کا خاوند اب اس عورت کو تیمم بھی کروا سکتا ہے اور اس کو دفن بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا محرم بن چکا ہے. تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَيْتَةِ، اور یہ حرمت ظاہر ہوگی اس مردہ عورت کے حق میں، دفن و تیمیمن، دفن کرنے اور تیمم کرانے کے اعتبار سے. یہ حرمت ظاہر ہوگی اس مردہ عورت کے حق میں، دفن کرنے اور तयमुम करवाने के हक में कि वो शख्स अब उसको तयमुम भी करवा सकता है और उसको दफन भी कर सकता है क्योंकि वो इसका महरम हो चुका है। अमल जुज़ियतु फिल वक़्ई, अब जवाब दे रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कियास का, उन्होंने इस मुर्दा औरत के दूध पिलाने को किस पर कियास किया था? मुर्दा औरत के साथ वती पर। और जैसे मुर्दा औरत के साथ वती में हुरमत नहीं आती, वो फरमाते हैं इस मुर्दा औरत का दूध पिलाने से भी हुरमत नहीं आएगी, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं। कहते हैं भाई मुर्दा औरत के साथ कोई वती करे तो वहां हुरमत नहीं आएगी, क्योंकि वहां हुरमत की वजह नहीं पाई जा रही। किसी औरत से जब वती की जाती है तो उसकी वजह से हुरमत आ जाती है। तवज्जो है, वजह यह कि यह जो वती है यह पहुंचाने वाली है औलाद तक, यह वती औलाद तक पहुंचाती है, और औलाद वो खावन का भी जूस है और बीवी का भी जूस है, तो दोनों के जूस इकट्ठे हो गए औलाद में, तो मियां बीवी दोनों एक दूसरे का जूस बन गए। औलाद में खावन का भी जूस, बीवी का भी जूस, दोनों के जूस इकट्ठे हो गए, दोनों एक फर्द के दर्जे में हो गए, गोया खावन का जूस बीवी का जूस बन गया और बीवी का जूस खावन का जूस बन गया, ये एक दूसरे के जूस बन गए भाई। और जब ये एक दूसरे के जूस बन गए तो उसकी वजह से फिर हुरमत आएगी भाई, क्योंकि जूस इंसान पर क्या होता है? हराम होता है। तवज्जो है, तो हम कहते हैं कि हुरमत मुसाहरत वाले मसले के अंदर जब कोई शख्स मुर्दा औरत से वती करेगा तो फिर हुरमत मुसाहरत नहीं आएगी। वजह यह कि हुरमत मुसाहरत क्यों आती थी? क्योंकि वती पहुंचाने वाली थी औलाद तक, और औलाद में दोनों के जूस इकट्ठे होते थे और दोनों एक दूसरे का जूस बन जाते थे। लेकिन मुर्दा औरत यह तो महल्ले औलाद ही नहीं है, इससे तो औलाद हो ही नहीं सकती। मालूम हो मुर्दा औरत से जब वती की है तो यह औलाद तक पहुंचाने वाली नहीं, जब ये औलाद तक पहुंचाने वाली नहीं तो मियां बीवी एक दूसरे का जूस भी नहीं बन सकते, जब नहीं बन सकते तो फिर लिहाजा इसकी वजह से हुरमत भी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अम्मल जुज़ी यतु फिल वती, और बाकी जूस होना जो वती में होता है, लिकौनी ही मुलाकियन लिमहल्लिल हर्सी, हर्स कहते हैं खेती को, हर्स किसे कहते हैं? खेती को। बीवी को भी कुरान में खावंद के लिए खेती करार दिया गया है, तो यहां साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि अमल जुज़ी यतु फिल वती, कि जुज होना वती में, लिकौनी ही मुलाकियन, इस वजह से कि वती ने मुलाकात की है, लिमहल्लिल हर्सी, महल्ले हर्स से यानी खेती से। वती की वजह से हुरमत क्यों आती है? क्योंकि वती कहां पाई जाती है? महल्ले हर्स यानी खेती में, जिससे आगे औलाद हो सकती है, और वह औलाद खावन का भी जूस बीवी का भी जूस, तो दोनों एक दूसरे का जूस बन गए, तो दोनों में इत्तेहाद आ गया, लिहाजा हुरमत आ जाती है। तवज्जो है, वो वती मुलाकात करती है किससे? महल्ले हर्स यानी खेती से, इसलिए हुरमत आती है। लेकिन यह औरत तो मर चुकी है, यह तो महल्ले हर्स ही नहीं, लिहाजा यहां औलाद होने का भी कोई शुबा नहीं और खावंद और बीवी का एक दूसरे का जूस बनने का भी कोई एहतमाल नहीं है, इसलिए यहां हुरमत नहीं आएगी। तो कहते हैं अम्मल जुज़ी यतु फिल वती, और बाकी जूस होना वती में, लिकौनी ही मुलाकियन लिमहल्लिल हर्सी, इसलिए क्योंकि वती ने मुलाकात की है खेती से, तो महल्ले हर्स यानी महल्ले काश्त बई, महल्ले हर्स का क्या तर्जमा कर लें? महल्ले काश्त बई। लिकौनी ही मुलाकियन ली महल्लिल हर्सी, इसलिए क्योंकि इस वती ने मुलाकात की है काश्त के महल से, वकद जाल बिल मौती, और वो महल्ले हर्स यानी काश्त का महल तो खत्म हो चुका है मौत की वजह से, आप उस महल से तो औलाद का हुसूल नहीं हो सकता, तो वो अब महल्ले हर्स ना रहा मौत की वजह से, औरत मर गई है, अब ये महल्ले हर्स नहीं है। फफ तारका, तो दोनों जुदा हो गए, दोनों जुदा हो गए। मुर्दा औरत का दूध पिलाया जाए किसी बच्चे को तो वहां हुरमत आती है जुज़ियत की वजह से, क्योंकि दूध की वजह से हड्डियों और गोश्त की नशोनुमा होगी, तो औरत बेशक मर चुकी है लेकिन उसके दूध में यह नशोनुमा वाला माना तो अभी भी मौजूद है, लिहाजा इससे हुरमत आएगी। और जबकि इसके मुकाबले में हुरमत मुसाहरत जो आती है वो चूंकि वो वती औलाद तक पहुंचाती है, और औलाद में बीवी और खावन दोनों के जूस मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का जूस बन जाते हैं, तो लिहाजा मुर्दा औरत का दूध निकाला जाए और किसी बच्चे को पिलाया जाए तो वहां फिर भी जुज़ियत वाला शुबा आएगा, لیکن اگر مردہ عورت کے ساتھ صحبت کی جائے تو وہاں جزئیت والا شبہ نہیں آتا، تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ. وَإِذَا احْتُقِنَ، احْتَقَنَ کا معنی ہے حقنا کرنا. حقنا کرنا اسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پخانے کے راستے سے دوا داخل کی جاتی ہے، اس کو حقنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حقنا. اب مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اگر ایک بچے کو حقنا کروایا گیا، یعنی پخانے کے راستے سے اس کے بدن میں دوا داخل کی گئی، اور حقنا کسی عورت کے دودھ کے ساتھ کروایا گیا، تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو آپ کو بتائیں گے نہیں، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ بچے کے جسم میں پہنچتا ہے وہاں حرمت کس لیے آتی ہے؟ شبہ جزئیت کی وجہ سے. اور بدن کو غذا دینے والی چیز وہ ہوتی ہے جو بدن میں اوپر کی طرف سے پہنچے، لہذا اس لیے اس دودھ کے ساتھ حقنا کروانے سے حرمت کا تعلق نہیں ہوگا. کہتے ہیں وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ، اور جب حقنا کروایا گیا کسی بچے کا دودھ کے ساتھ، لم يتعلق به التحریم، تو اس کے ساتھ تحریم کا تعلق نہیں ہوگا. وعن محمد رحمه الله انه يثبت به الحرمه كما يفسد به الصوم. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، كما يفسد به الصوم، جیسے اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جیسے اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ اس حرمت کو قیاس کرتے ہیں روزے پر. یاد رکھو، روزے کے اندر اگر کسی کا حقنا کروایا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے حقنا کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں حقنے کے ساتھ دودھ داخل کیا جائے گا تو حرمت بھی ثابت ہو جائے گی. تو امام محمد اس روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کرتے. حقنا کروایا جائے تو تحریم بھی آتی ہے، اور حقنا کروایا جائے تو روزہ بھی فاسد ہوگا. بھئی دونوں کا ایک ہی حکم ہے. بھئی تو کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یثبت به الحرمت، کہ اس حقنے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، کما یفسد به الصوم، جیسے اس حقنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ووجہ الفرق، اور فرق کی وجہ جو ہے، علی الظاہر، ظاہر روایت کے مطابق. بھئی جو متن میں آیا نا یہ ظاہر روایت ہے، وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، یہ ظاہر روایت ہے. امام محمد رحمہ اللہ تو کیا فرماتے ہیں؟ دودھ سے حقنا کروائیں گے تب ہی حرمت ثابت ہو جائے گی. انہوں نے روزے اور تحریم میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن ظاہر روایت کے مطابق روزے اور تحریم میں فرق کیا گیا ہے. روزے میں حقنا کروائیں گے روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن صغیر کا دودھ سے حقنا کروائیں گے تو تحریم ثابت نہیں ہوگی. تو دونوں میں فرق کیا گیا ہے ظاہر روایت میں، اس کی کیا وجہ ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں ووجہ الفرق، اور فرق کی وجہ یہ ہے، علی الظاہری، ظاہر روایت پر، کہ ان المفسد فی الصوم اصلاح البدنی، کہ وہ چیز جو روزے کو فاسد کرنے والی ہے وہ اصلاح البدن، بدن کی اصلاح ہے. روزے کی حالت میں حقنا کیا جائے گا مریض کا، تو اس سے اس کے بدن کی اصلاح ہوئی، اس کو فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا. بدن میں کوئی ایسی چیز داخل ہوئی جس سے بدن کو فائدہ ہوا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ان المفسد فی الصوم اصلاح البدنی، کہ روزے کے اندر وہ چیز جو فاسد کرنے والی ہے وہ بدن کی اصلاح ہے. ویوجد ذلک فی الدوائی، اور یہ چیز پائی گئی ہے دوا کے اندر. فاما المحرم فی الرضاعی، باقی وہ چیز جو رضاعت کے اندر حرام کرنے والی ہے، معنی النشوئی، وہ نشو نما کی علت ہے، نشو نما کا سبب ہے. ولا یوجد ذلک فی الاحتقانی، اور یہ نشو نما والی کا سبب تو نہیں پایا گیا احتقان میں، یعنی حقنا کرنے میں. لأن المغذی وصوله من الأعلى، اس لیے کیونکہ وہ چیز جو غذا دینے والی ہے، وصوله من الأعلى، اس کا پہنچنا اوپر سے ہوتا ہے، वो चीज जो बदन को गजा देती है, वो जो ऊपर से पहुंचे वो गजा देती है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इसलिए हुक्ने की सूरत में गजा चूंकि बदन तक नहीं पहुंची तो इससे हुरमत भी साबित नहीं। वह ईदा नजला लिर्रजुल लबनुन फअर्ज़अ सबिया, सूरत मसला ये, एक मर्द की छाती में दूध उतर आया और ये किसी बच्चे को पिलाता है तो क्या इससे हुरमत साबित होगी या नहीं? कहते हैं नहीं, इससे हुरमत साबित नहीं होगी, इसलिए क्योंकि मर्द की छाती में जो उतरा है उसकी सूरत दूध जैसी है, वो हकीकत में दूध नहीं, क्योंकि दूध उसी चीज का आ सकता है जो बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती है, जिस चीज से बच्चों की वलादत का तसव्वुर हो सके उसी से दूध का भी तसव्वुर किया जा सकता है, और मर्द तो ऐसा नहीं। लिहाजा मालूम हुआ ये जो मर्द की छाती में उतरा है ये दूध जैसी सूरत तो है लेकिन दूध नहीं है, तो इससे हुरमत साबित नहीं होगी। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह ईदा नजल अली रजुली लबनुन, और जब किसी आदमी का दूध उतर आया, फअर्ज़अ सबियन, तो उसने किसी बच्चे को वह दूध पिला दिया, लम यतअल्लक बिही तहरीम, तो इससे भी तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा, लिअन्नहु लैसा बिलबनिन अला तहकीकी, इसलिए क्योंकि यह दूध नहीं है बिना बर तहकीक के, यानी हकीकतन दूध नहीं है, फलम यतअल्लक बिही नुशू वन नुमू, नुशू का माना भी नशोनुमा और नुमुवन इसका माना भी नशोनुमा, फला यतअल्लकु बिही नुशू वन नुमुवु, लिहाजा इसके साथ उस बच्चे की नशोनुमा का ताल्लुक नहीं होगा, जब ये दूध नहीं है तो इससे बच्चे की नशोनुमा भी नहीं होगी। वहां दाली अन लबन इन नमा यू तसव्वरु, और ये इसलिए क्योंकि दूध जो है इसका तसव्वुर किया जा सकता है, मिम्मा यू तसव्वरु मिन हुल विलादतु, जिससे विलादत का तसव्वुर हो सके, जिससे वलादत यानी अवलाद को जन्म देने का तसव्वुर हो सके, और वो औरत है मर्द नहीं है भाई। वह इदा शरीबा सभी यानी मिन लबनी शातिन लम यतअल्लक बिही तहरीम, भाई सूरत मसला ये, अगर दो बच्चों ने एक ही गाय भैंस या बकरी का दूध पी लिया तो क्या उसे रजाअत साबित होगी या नहीं? कहते हैं नहीं, उसे रजाअत साबित नहीं होगी। कहते हैं वह इदा शरीबा सबियान मिन लबनी शातिन, और जब दो बच्चों ने पी लिया एक ही भेड़ बकरी के दूध में से, लम यतअल्लक बिही तहरीम, तो इसे तहरीम का ताल्लुक नहीं होगा, लिअन्नहु ला जुज़ियत बैनल आदमी वल बहाइमी, इसलिए क्योंकि कोई जुज़ियत नहीं है आदमी और चौपाए में, आदमी और चौपायों में कोई जुज़ियत नहीं होती, दोनों बच्चे अगर बकरी का दूध पिएंगे तो वो बकरी के जुज़ नहीं बनेंगे भाई, जुज़ियत तो इंसानों में होती है, इंसानों और हैवानों में नहीं होती। कहते हैं लिअन्नहु ला जुज़ियत बैनल आदमी वल बहाइमी, इसलिए क्योंकि कोई जुज़ियत नहीं है आदमी और चौपायों के दरमियान, वल हुर्मतु बिअतिबारिहा, और हुर्मत तो इसी जुज़ियत के एतबार से आती है और वो तो यहां मौजूद नहीं है। मालूम हुआ एक ही भेड़ बकरी या गाय का दूध कोई दो बच्चे पी लें तो उससे कोई हुर्मत साबित नहीं होती। याद रखो इस सिलसिले में उलमा जिक्र फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाहु ताला रहमतं वासिआ, जो अजीम मुहद्दिस थे, वो आखिर उम्र में बुखारा तशरीफ लाए, वो तो बुखारा के रहने वाले थे लेकिन तहसील इलम के अंदर सफर में कभी एक जगह होते कभी दूसरी जगह होते, तो आखिर उम्र में बुखारा तशरीफ लाए और आपकी शोहरत हो चुकी थी पूरी दुनिया के अंदर अजीम मुहद्दिस के तौर पर, और यहां उन्होंने फतवा देने का भी सिलसिला शुरू किया, फतवा देने का सिलसिला शुरू किया। उस जमाने में वहां पर सबसे बड़े शेख जो थे वो अबू हफ्से कबीर थे भाई, ये हनफी थे, तो इन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से जिक्र फरमाया कि आप फतवा न दें। याद रखो ये फतवा देना ये एक अलग सलाहियत है, बाज लोगों को अल्लाह ताला ने बाज लोगों का हाफिजा बड़ा कवि बनाया होता है, जैसे मुहद्दिसीन हैं, मुहद्दिसीन को अल्लाह ने बे इंतहा कवि हाफिज नसीब फरमाए थे, जबकि जो फकीह होता है, फकीह जो है उसका हाफिजा उस दर्जे का ना हो लेकिन उसको जहन अल्लाह ऐसा देते हैं कि वो कुरान और हदीस में गौर करके मसाइल निकाल लेते हैं, वो बात की गहराई तक पहुंच जाते हैं कि कहने वाला यहां क्या कहना चाहता है भाई, چنانچہ اسی لیے قرآن و حدیث میں معمولی اشارے سے بھی وہ مسئلہ نکالتے ہیں بھائی. تو فقی ہونا یہ الگ خصوصیت ہے جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو عطا ہوتی ہے, اور محدث ہونا یہ الگ خصوصیت ہے جو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو امام بخاری فتویٰ دینے لگے تو شیخ ابو الحفص کبیر رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ حضرت یہ فتویٰ آپ کے بس کی چیز نہیں, آپ فتویٰ نہ دیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بھائی آخر ان کا ایک مقام تھا بھائی, پوری دنیا کے اندر شہرت تھی, بڑے بڑے جبال العلوم ان کے پاس تشریف لاتے تھے, تو امام بخاری رحمہ اللہ فتویٰ بھی دینے لگے. انہی دنوں کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ اگر کوئی دو بچے ایک ہی بھیڑ بکری کا دودھ پی لیں تو کیا دونوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے ہاں حرمت ثابت ہو جائے گی, ایک ہی بھیڑ بکری یا گائے کا دودھ دو بچے پی لیں تو حرمت ہی ثابت ہو جائے گی. کہتے ہیں اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا, کیونکہ بھائی ایک بھیڑ بکری کا دودھ تو پورے خاندان کے بچے پیتے ہیں بھائی, پورے محلے والے ایک گائے وغیرہ کا دودھ استعمال کرتے ہیں. تو چنانچہ بڑا فتنہ پھیل گیا اور بالآخر امام بخاری رحمہ اللہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. جو چنانچہ کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے امام بخاری احناف سے ناراض ہیں. وہ اپنے بخاری میں اور ائمہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن امام صاحب کا نام ذکر نہیں کرتے. جہاں امام صاحب کا نام آتا ہے ان کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں قال بعض الناس, بعض لوگوں نے کہا ہے, بطور تحقیر کے بھائی. تو والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام بخاری آپ کی اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہے امام صاحب سے, امام صاحب سے قصور اس زمانے کے لوگوں کا تو ہو سکتا ہے, امام صاحب کی تو وفات اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے بھائی. تو والد صاحب رحم اللہ فرماتے کہ امام بخاری رحم اللہ نے جو اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اتنی ناراضگی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور جو ہے وہ اس بخارا کے بعض لوگوں کا تو ہو سکتا تھا لیکن امام صاحب وہ تو پہلے ہی گزر چکے ہیں, ان کا تو زمانہ ہوا, انتقال ہو چکا, تو ان سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے تھی بھائی. بات سمجھ میں آ گئے. تو بہرحال یہ سب جبال العلوم تھے بھائی, اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقامات نصیب فرمائے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دیکھو تقریباً 1200 سال گزر گئے, امام بخاری کی کتاب پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے ہیں, تو ثواب کے کتنے عظیم سمندر ان کے لیے چل رہے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئے جی. تو یہ واقعہ بھی محشی حضرات نے یہاں حاشیے میں ذکر کیا ہے تو میں نے بیان کر دیا. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی, کتابوں میں علماء نے ذکر کیا ہے بھائی. اور امام بخاری کوئی معمولی انسان نہیں ہے بھائی, عظیم ترین حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی بھائی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ بھائی. اور پھر بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اتنی گہری باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, خصوصاً جو مختلف ابواب کے وہ عنوانات دیتے ہیں تو علماء وہ جو ابواب کے نام امام بخاری نے رکھے ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے علماء حیران رہتے ہیں, اور وہ نکات ختم ہی نہیں ہوتے, ایسے ایسے نقطے علماء بیان فرماتے ہیں. تو بخاری کے اندر امام بخاری کے ذہن کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا عظیم ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا. لیکن بہرحال فقاہت ایک الگ چیز ہے. امام بخاری کا نام تمام علماء محدثین میں تو ذکر کرتے ہیں, فقہا میں ذکر نہیں کرتے, کیونکہ فقاہت الگ چیز ہے اور محدث ہونا ایک الگ چیز ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.